अब आज प्रातः इस सभा के ये टेप बेचे नहीं गए, ये केवल कलीसिया या किसी के लिए हैं, क्योंकि ये शिक्षा पर हैं, और वहाँ सभा में इसके कारण भ्रम हो गया, क्योंकि कठिनाई से हम दो आंखों से आंख सही प्रकार मिला सके, परंतु जो भी है हमारा हृदय से हृदय मिलना चाहिए। हम ये आराधनालय में हैं, ये टेप जिन पर आप ध्यान दे रहे हैं ये केवल मित्रों आदि के लिए हैं। अब आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, कितने चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना में स्मरण किया जाए। केवल अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें, प्रभु मैं आज तेरे अनुग्रह की आवश्यकता में हूँ, चाहे ये जिसके लिए भी हो। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि हमसे यही करने को कहा गया है, और हमसे ये आपके पुत्र के द्वारा और हमारे बचाने वाले के द्वारा बताया गया है कि यदि हम उसके नाम में होकर कुछ भी मांगेंगे तो वो प्रदान कर दिया जाएगा। इसलिए प्रभु, ये जानते हुए कि हम उसके आगमन की प्रतिछाया में रह रहे हैं और अब उसके अनुग्रह की छाया में खड़े हैं, तब प्रभु हम मांगते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीजें चुनते हैं जो हमें मांगनी चाहिए। और इस प्रातः हम ये अनुभव करते हैं कि ये आपके वचन के विरुद्ध नहीं होगा, यह तेरी महान धार्मिकता और तेरी दया और अनुग्रह कि यदि हमें मांगना चाहिए कि हमें आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे विशेष भेंट हो, ताकि वो हमारे मध्य में आए और हमारे हृदय के गुप्त विचारों को जांचे, हमें हमारे निर्बल स्थान दर्शाए और हमारे रोगों को चंगा करे और टूटे हुए हृदयों को जोड़े और खोए हुओं को बचाए और लोगों को उसके आगमन के लिए तैयार करे। प्रभु इस प्रार्थना को सुने। अब हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रातः हमारे संडे स्कूल के पाठ पर, जिसका मूल पाठ आप पढ़ने के लिए सामने लाते हैं, और इसे हमारे हृदयों पर प्रकट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं और वो उद्देश्य केवल ये है कि हम आपको अच्छी प्रकार से जानें। हम जो विश्वास से मसीही हैं, आपको अच्छी प्रकार से जानना चाहते हैं। वे जो अभी मसीही नहीं हुए हैं, आपको अपने बचाने वाले के रूप में जानना चाहते हैं। वे जो रोगी हैं, आपको अपना चंगा करने वाले के रूप में जानना चाहते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि एक भी इस भवन से खाली हाथ ना जाए, परंतु हर निवेदन, हर अक्षर पूरा हो और हर इच्छा पूरी हो, और हर व्यक्ति प्रसन्न हो और इस भवन से ये कहता हुआ जाए, जैसे वे जो अमाउस से आए थे, कि जब हम से बातें करता था तो क्या हमारे हृदय उत्तेजना से नहीं भर गए, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब जो आप अपनी पुस्तक खोलना चाहते हैं, मैंने अक्सर सुसमाचार की सभाओं में पाया है कि 20 या 30 मिनट का आत्मिक संदेश लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है और तब वेदी की बुलाहट। परंतु संडे स्कूल होने के नाते मैं आज प्रातः उस प्रकार से नहीं करना चाहता हूँ। मुझे वचन पर बात करने और अपना समय लेने की अधिक अगुवाई हो रही है। अब यदि कोई बेचैन है, अधिक ठंडा है, आपको केवल ये करना है, मेरे भाई अभिरक्षक आराधनालय में पीछे हैं, केवल इस प्रकार से अपना हाथ उठाएं, वहाँ पीछे उसे और वो तापमान को अनुकूल कर देगा, और हम आपको आरामदायक और अच्छा अनुभव कराना चाहते हैं। और वचन को सुने, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। और क्या आप पीछे की ओर सब ठीक से सुन सकते हैं? यदि आप सुन सकते हैं तो अपने हाथों को उठाएं। यदि आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, ये अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ मूल पाठ जो मैंने यहां लिख रखे हैं और कुछ वचन निकालें। इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पहले रोमियो की पुस्तक, रोमियो नवा अध्याय और हम वचन के पाठ के लिए पढ़ना चाहते हैं। पहले रोमियो 9:11
For the children being not yet born, neither having
और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि परमेश्वर की मंशा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब मूल पाठ के लिए अपने पाठ की भूमिका के लिए मैं इसे मूल पाठ के लिए लेना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनना, पहचाना, अनुकरण करना। मैं इसे फिर से दोहरा दूं, सुनना और पहचानना और तब परमेश्वर के वचन का अनुकरण करना। अब हम इससे पूरी तरह से परिचित हैं। हम लोग जो वचन को दिन रात खोजते और अपने कागज पढ़ते और समाचार पर टिप्पणियां करने वालों को सुनते कि ये संसार अब दो आत्मिक शक्तियों के पकड़ में है और ये दोनों धार्मिक शक्तियां हैं।
And I believe that these great forces are soon coming to a head.
और अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये महान शक्तियाँ जल्द ही अपनी चरम सीमा पर आ रही हैं। और ये दोनों शक्तियाँ इसहाक के दोनों पुत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
How that God in His infinite wisdom
कैसे परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धि से हमें सारी बातों की प्रतिछाया दिखाई है ताकि हम इन बातों के द्वारा निश्चित रूप में जान सकें कि हमारे सामने क्या रखा है। इतना सरल कर दिया कि परमेश्वर और उसका वचन और उसका स्वभाव और उसका भूमंडल आपस में इतने सिद्ध रूप से व्यवस्थित हैं कि यहाँ तक कि पापी भी देख सकता है कि कुछ होने के लिए तय है। परमेश्वर ने ऐसा व्यवस्थित किया है कि किसी के पास बहाना नहीं है। अब हम इन दो पुत्रों में देखते हैं कि जब वे इससे पहले कि वे जन्म लेते वे आपस में एक दूसरे से युद्ध करते थे। यहाँ तक कि उनकी कुंवारी माँ, क्योंकि वो कुंवारी थी, सुंदर रिबका जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक धर्मी बीज के साथ ब्याही गई, कि वे दो पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उस पहले से ठहराए हुए विवाह के लिए जिसके द्वारा वे जोड़े गए। परमेश्वर इसे पहले से जानता था। और उस माँ और पिता के द्वारा कैसे ऐसी चीज आ सकती थी, एक दुष्ट व्यक्ति और दूसरा बहुत भला व्यक्ति, और कैसे एक भला व्यक्ति दुष्ट लगता था और दुष्ट भला दिखाई पड़ता था। अब ये सदा से था और सदा परमेश्वर की योजना रही है। परमेश्वर अपनी योजना नहीं बदल सकता क्योंकि वो अपनी योजना को सिद्ध बनाता है क्योंकि ये उसका भाग है। अदन की वाटिका में पाप तब तक आकर्षक रहा जब तक कि हवा को धार्मिकता से आकर्षित करके पाप में नहीं ले गया। और उसी वाटिका में जहाँ जीवन का वृक्ष था वहाँ मृत्यु का भी वृक्ष था। आज हम इसे विरोध की व्यवस्था में जानेंगे कि जहाँ भलाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ ठीक है वहाँ गलत भी है। इससे कोई मतलब नहीं कि चाहे जो भी हमारा वातावरण हो सकता है हम कभी भी इस योग्य नहीं कि इनमें से किसी की भी उपस्थिति में स्वयं को झकझोरें। क्योंकि पौलुस ने कहा जब मैं भला करना चाहता हूँ तो बुराई हो जाती है। पापी कभी भी इस योग्य ना होगा कि मसीह से अलग हो जाए और मसीह पापी से। वहाँ एक सही गवाही होगी और गलत गवाही, ये हमेशा है। और आप अपना चुनाव करते हैं, आपको या तो इधर या उधर होना होता है। परंतु इन दो पुत्रों में जानकर विचित्र लगता है कि जन्म लेने से पहले वे दोनों इसहाक के बीज हैं, जो कि प्रतिज्ञा थी। अब हमारा पाठ थोड़ा लंबा है और मैं एक अच्छी भूमिका बनाना चाहता हूँ जब तक कि आप ठीक ठीक ना देख सकें कि मैं किस विषय में बोल रहा हूँ। और पहला पुत्र जो जन्मा ऐसा था, हम पाते हैं कि वे केवल अपनी माँ के गर्भ में उपद्रव और झगड़ा ही नहीं कर रहे थे, परंतु वे आपस में झगड़ते हुए अपनी माँ से जन्मे। ऐसा बाहर आया और याकूब उसकी एड़ी पकड़े हुए था और वे अब भी लड़ रहे थे। और कैसे ये कैसे उन सिद्ध निर्मल चुने हुए पवित्र समर्पित पिता या माता से आ सकता था। इसलिए इसे आधार बनाने के लिए कि परमेश्वर चुनाव के द्वारा बुलाता है ये होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पिता और माता कितने भले थे, वे कितने अच्छे थे, आपके पिता और माता कितने मसीही थे। ये आपके अपने व्यक्तित्व के ऊपर है, आपकी स्थिति परमेश्वर के सन्मुख। ये पाठ ये सिखाता है कि दोनों बालक जो कि चुने हुए और परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए पिता और माता, एक कुंवारी स्त्री और एक पवित्र मनुष्य, अंत में जिनके वंश के द्वारा यीशु मसीह आया, वो मानो एक मरे हुए से जन्मा था। उसके पहले उसका पिता परखा गया था और उसे इस वंश इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा मिली थी कि समस्त संसार बचाया जाएगा। और इस प्रकार के मनुष्य के द्वारा और उसका लहू इतना शुद्ध था कि परमेश्वर ने फिलिस्तीनी को भी उसकी माँ को छूने नहीं दिया। जब अब्राहम ने उसे उसको दिया था, परमेश्वर ने उसके घराने को श्रापित किया और कहा कि तू एक मृत के समान है, उस शुद्ध लहू की धारा को संभाले रहा। और वो रिबका एक धर्मी पवित्र परमेश्वर द्वारा भेजी गई और बुलाई गई माँ, और उस पवित्र बीज के द्वारा एक घुमक्कड़ और एक विश्वासी आए, समझे। इसलिए ये परमेश्वर की बुलाहट में है, परमेश्वर के चुनाव में। इसके पहले कि कोई भी जन्म लेता, परमेश्वर ने कहा मैंने याकूब से प्रेम किया और ऐसाव को अप्रिय जाना, इसके पहले कि कोई भी जन्म लेता। इसलिए हमें क्या अनुभव करना चाहिए, कोई भी जिससे परमेश्वर बात करे और आपको अपनी मेज पर आमंत्रित करे और अपने घर पर, और उसका पुत्र या पुत्री हो, इससे महान कोई और बात नहीं हो सकती। ये दोनों लड़के, यदि हम उनके स्वभाव पर ध्यान दें, उनमें से एक आत्मिक मनुष्य था जो कि याकूब था और ऐसा शारीरिक मनुष्य था, परंतु वे दोनों धर्मी थे। और सारे युगों में होते हुए यही घटित हुआ, शारीरिक और आत्मिक। ऐसा संसारिक स्वाभाविक धर्मी प्रवृत्ति मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु कभी योग्य ना था, उसमें ये करने का था ही नहीं, वो इसे नहीं कर सकता था, वो उसमें था ही नहीं कि वो संसार की चीजों पर शारीरिक बातों पर जयवंत हो सके, परंतु याकूब उसके लिए ये करना बहुत सरल था। अब याकूब का एक उद्देश्य था और वो ये था कि वो जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लैलित था। इससे कोई मतलब नहीं कि वो इसे कैसे पाए, इसलिए उसने इसे ले लिया। और इस एक जन्म की आत्मा ने आज भी संसार में प्रतिनिधित्व किया है और अब ये चोटी पर आ रही है। आत्मिक विश्वासी और शारीरिक मनुष्य, शारीरिक विश्वासी, कोई ये नहीं कह सकता था कि वे दोनों धर्मी नहीं थे। वे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक ने मूर्तियों की पूजा की और दूसरे ने परमेश्वर की। वे दोनों परमेश्वर के दास थे। अब पवित्र वचनों पर पास से ध्यान दें। अब इस विषय पर, क्योंकि मुझे निश्चित है कि ये आपकी सहायता करेगा, समझे। अब हर वो व्यक्ति नहीं जो प्रभु प्रभु कहता है प्रवेश करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है जो स्वर्ग में है। अब यदि आप ध्यान दें, याकूब के पास एक चीज थी जो वो चाहता था, क्योंकि वचन के अनुसार आशीषें और अच्छी चीजें उस जन्म सिद्ध अधिकार के अंदर थीं, और याकूब उसका केवल एक ही उद्देश्य था। उसके मस्तिष्क में जो एक बात थी कि उस जन्म सिद्ध अधिकार को ले लो, और एसाव ने उसे तुच्छ समझा, जिसके पास वास्तव में था उसने उसे तुच्छ समझा, या वो इससे लजाया था। परंतु कुछ भी हो, याकूब इसे चाहता था कि जैसे भी प्राप्त किया जाए, वो इसे चाहता था। आत्मिक विश्वासी के साथ आज यही है। वो चिंता नहीं करता कि आप उस पर कितना हंसते हैं, आप चाहे जितना उपहास करो, उसे चाहे जितना भी विचित्र व्यवहार करना पड़े। उस संसारिक बुद्धि के सामने उसका केवल एक उद्देश्य है, जन्म सिद्ध अधिकार। वो परमेश्वर के पास जाना चाहता था, क्योंकि ये उसमें जन्मा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। याकूब का अर्थ हत्याने वाला या धोखेबाज, परंतु जन्म अधिकार के लेने के पश्चात पाते ही कि वो बदल गया था। ये शारीरिक बदलाव है। और तब वो याकूब एक राजकुमार कहलाया, प्रभु के साथ जो उसके साथ कुश्ती लड़ा था। आज शारीरिक विश्वासी, ओ जब तक मैं कलीसिया में जाता हूँ और जो ठीक है वो करता हूँ, इससे क्या अंतर पड़ता है। ये एसाव का झुंड है। वो अब भी जन्म अधिकार का उपहास उड़ाता है और तुझ समझता है, उसकी चिंता नहीं करता। परंतु याकूब इससे प्रेम करता है। और आज आत्मिक पुरुष और आत्मिक महिला, जो कि अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के चुने हुए हैं, ठहराए हुए, यदि उन्हें अपना वो सब बेचना पड़े जो उनके पास है, यदि उन्हें कलीसिया की हर पुस्तक में से अपना नाम कटवाना पड़े उस राज्य में, वे अब भी वो जन्म अधिकार चाहते हैं। उनके लिए केवल यही महत्व रखता है कि जन्म सिद्ध अधिकार पाएं। बस इससे कोई मतलब नहीं कि कैसे, कि उन्हें किस स्तर पर आना है। यदि उन्हें वेदी पर जाकर रोना पड़े, यदि उन्हें स्थानों को छोड़कर भागना पड़े और वापस जाकर बातों को ठीक करना पड़े, और उनके पास जो भी है उसे बेचना पड़े, और उनके पास सब जो भी है देना पड़े, और तीर्थ यात्री और अपरिचित होना पड़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वे जन्म का अधिकार चाहते हैं। वे केवल इसी में रुचि रखते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। अब लोगों को दोष न दें, वे इसमें निस्सहाय हैं। वे इसी के लिए ठहराए गए थे, इसी बात के लिए चुने गए थे। और तब हम इन दो को देखते हैं, शारीरिक और आत्मिक लोग, और सदा ऐसा ही होता है, और आज भी ऐसा ही है। ये सदा ही ऐसे रहा है। केन और हाबिल, अदन वाटिका में जब अदन की उत्पत्ति की गई थी, वहाँ मनुष्य के लिए उसके चुनाव हेतु दो वृक्ष थे। एक से वो बुद्धिमान हो जाता और दूसरे से वो जीवन हो जाता। वहाँ दो लड़के थे, केन और हाबिल, दोनों धर्मी थे। एक की इच्छा अनंत जीवन की थी और उसने विश्वास से परमेश्वर को कैन से अच्छा बलिदान चढ़ाया। आज की कलीसियाओं की सिद्ध छाया, शारीरिक कलीसिया और आत्मिक कलीसिया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इस समय दोनों वर्गों से बात कर रहा हूँ और संभवतः टेप के द्वारा 10,000 लोगों से बात करूंगा। परंतु देखिए, शारीरिक कलीसिया ये केवल शारीरिक कलीसिया है। वे कभी भी इस छोटी सी बात से ऊपर नहीं आ सकते। मैं कलीसिया में सम्मिलित हो गया हूँ, यदि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मैं आराधनालय में जाता हूँ। परमेश्वर केवल यही चाहता है। अब ठीक यही केन ने किया। वो गया और वेदी बनाई, उसने बलिदान चढ़ाया और देश के फल लेकर आया, और उसने कहा, परमेश्वर ये यहाँ है, मेरे पास सबसे अच्छा यही है, ले ले या छोड़ दे। और आज शारीरिक विश्वासी इसी प्रकार से विश्वास करता है, प्रभु मैं आराधनालय में जाऊंगा, मैं जो सबसे अच्छा झुंड पा सकता हूँ उनमें सम्मिलित हो जाऊंगा और मैं कलीसिया को अपने सारे शुल्कों का भुगतान करूंगा, जो सही है मैं वो करूंगा, यही सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ। मैं किसी विधवा की कोयला खरीदने में सहायता करूंगा, मैं बालकों को कुछ वस्त्र दूंगा, वो सब ठीक है, इसके विरोध में कुछ नहीं कहना है, परंतु यही है, यही सब कुछ है। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसे लीजिए, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको लेना नहीं पड़ेगा। अब आज संसारिक कलीसिया की यही मनोस्थिति है, परंतु आत्मिक कलीसिया हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, उसने उसके पार देखा और विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसकी धार्मिकता की गवाही दी गई। परमेश्वर, ठीक यही बात इश्माइल और इजाक में घटित हुई। एक शरीर से था और दूसरा आत्मा से था, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। इज़राइल और मोआब के बीच में भी ठीक यही घटित हुआ। दो महान कलीसियाएं पास पास आईं, और जब इज़राइल अपने प्रतिज्ञा किए हुए स्थान में जाना चाहता था, आत्मिक कलीसिया, याकूब के लोग, इज़राइल अपने मार्ग पर है, एसाव के लोग उनसे मार्ग में मिले, मोआब, शक्तिशाली कलीसिया, कलीसिया का एक महान मार्गदर्शक बालाम अपने भाइयों को श्रापित करने आया, परंतु पाया कि वो अपने भाई को श्रापित नहीं कर सकता। वो आंखों के अंधेपन से पहले से ठहराई हुई योजना को नहीं देख सका, और परमेश्वर के वचन को देखना, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से, तब विश्वासी इसे सुनता है, पहचानता है और उसका अनुकरण करता है। शारीरिक मनुष्य इसे सुनेगा, इसकी ध्वनि को, परंतु कभी भी सुनने का अर्थ इसे समझना है। ताकना किसी चीज को देखना, परंतु इसको देखना इसे समझना है। जब तक मनुष्य फिर से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता या समझ नहीं सकता। अब यहाँ इज़राइल आता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ आता है। वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे, अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी, उसी परमेश्वर में विश्वास करने वाले जिसमें इज़राइल का था, बाहर आकर अपने भाई को श्रापित करने का यत्न किया, क्योंकि उसने कहा निश्चय ही उसका भाई अधर्मी था, क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी चीजें करी थी जो बुरी थी। परंतु आप देखिए, वो चुनाव को देखने में असफल रहा। यही चीज एसाव और याकूब के साथ थी। एसाव अच्छा मनुष्य प्रतीत होता था, वो बस गया और धर्म के कार्य किए, उसने अपने बूढ़े अंधे पिता की देखभाल की, उसे हिरण का मांस खिलाया और उसकी देखभाल की, और एक अच्छा लड़का था। शारीरिक विश्वासी बहुत सी चीजें धर्म की लीक पर करता है, सहायक समितियां और लोगों के अस्पताल के भुगतान, धार्मिक चीजें, परंतु मैं इस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मोआब अच्छा था, बड़ा राष्ट्र, उसका भाई और याकूब ने सब कुछ किया। वो एक घुमक्कड़ था, परंतु उसे अब भी एक चीज प्राप्त करनी थी, वो उस प्रतिज्ञा को पाना, वो जन्म सिद्ध अधिकार। यहाँ याकूब के बालक इसराइल आता है उसी उद्देश्य के साथ। अब कौन सही होगा? बालाम ने 7 वेदियां बनाई। इसराइल में 7 वेदियां थीं। बालाम ने शुद्ध पशुओं की 7 बलियां चढ़ाई। इसराइल ने शुद्ध पशुओं की 7 बलियां चढ़ाई। यदि ये औपचारिकता में लिया जाए तो मोआब वैसे ही धर्मी था जैसे इसराइल था, ऐसा वैसे ही धर्मी था जैसे याकूब था, और केन वैसे ही धर्मी था जैसे हाबिल था। परंतु ये तो चुनाव ही है जो नियंत्रण रखता है। कितने अंधे ऐसा के बालक, कितने अंधे थे। आत्मिक रूप में बोल रहा हूँ, मोआबी इसराइल को देखते हैं और कहा उन्हें देखो, वे नामधारी पंथ नहीं है, वे घुमक्कड़ों का झुंड है, वे तंबुओं में रहते हैं, और हम एक बड़ा राष्ट्र हैं, उन्होंने बुराइयां की हैं, और उनके बीच में कोई संस्था नहीं है, वे केवल इधर उधर भटक रहे हैं, एक भविष्यद्वक्ता के पीछे पीछे चल रहे हैं। परंतु वो पीतल के सांप को देखने में असफल रहा, और उस मारी हुई चट्टान को जो उनके आगे आगे चल रही थी, वो उन चुनावों बुलाए गए झुंड को जो परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था का पालन कर रहे थे, उस प्रतिज्ञा के देश के लिए उन्हें देखने में असफल रहा। आज भी इसी प्रकार है। वे कहते थे ये पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड है, ये लोगों का झुंड है, ये वो या अमुक कौन है, परंतु वे इसे देखने में असफल रहे कि वे परमेश्वर के वचन के निर्देश का पालन कर रहे हैं। इसराइल अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर था। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की। याकूब, वो कारण कि उसने किसी भी परिस्थिति में जन्म सिद्ध अधिकार को चुना, वो इसे ले लेना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि इसमें आशीष है, इसमें जीवन है। उसने चिंता नहीं की कि वो कैसे मिलेगा, इसलिए उसने इसे पा लिया। ये मूल बात थी। इससे कोई मतलब नहीं कि ये किस स्तर पर आता है, वो इसे चाहता था, उसे ये चाहिए था, और उसने इसे पा लिया। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। वो अपने मार्ग पर था और वो इसके पीछे था, और उसने इसे पा लिया। इसराइल प्रतिज्ञा के देश के लिए अपने मार्ग पर था। इससे कोई मतलब नहीं मोआबियों ने उन्हें कितना श्रापित ठहराने का यत्न किया था, वे सीधे अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को चले गए। और आज आप कभी नहीं करेंगे, चिंता नहीं उनके पास कितने कानून हैं, कितना सताओ, कितना सताना, वे कितनी बुरी बातें कहते हैं, वे कितनी बार पवित्र शोर मचाने वाला कहते हैं, वे कितनी बार उन बातों को कहते हैं। कलीसिया बढ़ती जाती है, ये होना ही है, ये परमेश्वर के वचन में स्थिर है। एक बार दो राजा मिल गए, उनमें से एक आहाब खराब था, दूसरा यहोशापात था, आत्मिक कलीसिया, शारीरिक कलीसिया। आहाब किनारे वाला विश्वासी था, उसके पास भविष्यद्वक्ता थे, वे विधर्मी नहीं थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे इजरायली भविष्यद्वक्ता थे, परंतु वे सब आहाब राजा के द्वारा सिखाए हुए और खिलाए पिलाए और कपड़े पहनाए हुए थे। वो इस प्रकार का स्थान हो गया था कि उनका राजनीतिक समर्थन था। यहोशापात आया और उसके साथ मिलाप किया, जो कि गलत था। आपको कभी भी अविश्वासी के साथ जुटना नहीं, हमें कभी भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, कभी भी अपना नाम कलीसियाओं की पुस्तकों में नहीं लिखवाना चाहिए, जो कि पूरे सुसमाचार में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं। आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और वे परेशानी में पड़ गए, और इस धर्मी मनुष्य ने कहा, क्या हमें पहले परमेश्वर से सम्मति नहीं लेनी चाहिए और मालूम करें कि हमें रमोत गिलाद को जाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए कि व्यवस्था कितनी सिद्ध दिखाई पड़ती है। हमें रमोत गिलाद लेना है, ये हमारी संपत्ति है, और सीरियाओं ने जीवित परमेश्वर से इसे ले लिया है। क्या हमें जाकर और देश को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए? और उसने इतना अच्छा भाषण दिया, और इतना वैध, और इतना धार्मिकता से भरा जब तक कि यहोशापात भी इसमें सहमत ना हो गया। और आज लोग प्रचार मंच पर खड़े होकर इस प्रकार के बुद्धि से भरे भाषण देते हैं और शिक्षा, जब तक कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बाइबल से अलग नहीं कर देते, वे दिव्य चंगाई की व्याख्या कर सकते हैं, वे अन्य भाषा बोलने और अनुवाद की व्याख्या कर सकते हैं, वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की व्याख्या दूसरे दिन के लिए कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का चुना हुआ मनुष्य, एक मनुष्य, मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, आपका परमेश्वर का चुनाव आप पर होना चाहिए, ये कभी भी आपको ठोकर नहीं खिलाएगा। यहोशापात ने कहा, धर्मी राजा ने कहा, क्या यहाँ कोई परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं ताकि हम प्रभु से सम्मति ले सकें? आहा, बिना इसके आगे बढ़ रहा था। इसी प्रकार आज शारीरिक कलीसिया कर रही है। ओ, उनके धार्मिक विद्यालय प्रचारकों से महान पुरुषों, महान विद्वानों, बुद्धिमान, तेज मस्तिष्क से भरे हुए थे। ओ प्रभु, कलीसिया के मस्तिष्क से बहुत परे, या आत्मिक कलीसिया। नूह के दिनों में, उन दिनों में शारीरिक कलीसिया को देखिए, वे क्या थे? वैज्ञानिक, भवन निर्माण करने वाले, तेज पुरुष, परंतु चुने हुए हनोक और नूह चरवाहे और किसान नम्र थे, शिक्षित नहीं, तेज नहीं, परंतु अपने परमेश्वर को जानते थे। उनमें कुछ था, हलचल और बुला रहा था। हम इसे थोड़ी देर पश्चात लेंगे। अब इसलिए यहोशापात ने कहा, क्या कोई भविष्यद्वक्ता नहीं? ओ, वास्तव में उनमें शारीरिक था, निश्चय ही हम में है। मेरे पास यहाँ धर्म विद्यालय है, उनसे भरे हुए हैं। 400 ले आया। अब ये लोग विधर्मी नहीं हैं, वे यहोवा परमेश्वर के उपासक हैं। आकर और उन्होंने कहा, आइए थोड़ी देर के लिए और हम भविष्यवाणी करेंगे। और इसलिए वे सब एकत्र हो गए और वे प्रभु के वचन के साथ आए और उन्होंने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसराइली भविष्यद्वक्ता, यहोवा यूं कहता है, आगे बढ़िए, प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम रमोत गिलाद को ले लोगे, क्योंकि ये वास्तव में इसराइल का है। और उन लोगों में से एक ने लोहे के दो सींग बनाए प्रतिनिधित्व के तरह और वो आगे बढ़ गया और उसने कहा, इससे तुम इसराइली यानी सीरियाइयों को रमोत गिलाद में से निकाल दोगे। परंतु यहोशापात उसमें कुछ था। ओ, मुझे आशा है परमेश्वर इसे आपके हृदय में डाल देगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये वो है जो परमेश्वर चुनाव के द्वारा आपके लिए करता है, वो नहीं जो दौड़ता है या जो दिखाता है, ये परमेश्वर है जो अनुग्रह दर्शाता है। यहोशापात ने कहा, वे सुसज्जित पुरुष हैं, कोई संदेह नहीं। उसने कुछ इस प्रकार कहा, वे बुद्धिमान हैं और तेज, जिन्हें मैंने कभी नहीं सुना। वे उस समय शिक्षित थे, वे एक ही मत पर स्थिर थे, उनके मध्य में एक महान एकता थी और वे तेज हैं। उनके पास उनके लिए बहुत सारा सत्य है, सारी त्रुटियों में सत्य है। सबसे बड़ा झूठ जो कभी बोला गया उसमें 90% सत्य था, वो झूठ जो शैतान ने हवा से कहा था। ओ, वे जो कह रहे हैं उसमें बहुत सारी सच्चाई है, परंतु क्या उसमें एक और नहीं है? अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं जो उस मनुष्य ने कहा, जब उन तेज तरार और सबसे अच्छों में से 400 यहाँ हैं, वे वहाँ जंगल में अधनंगे भक्त नहीं फिर रहे हैं और उन्होंने भेड़ की खा लिया कुछ और लपेटा हुआ नहीं है। ये वे मनुष्य हैं जिन्हें खिलाया गया है, मैंने शिक्षित किया है। ये वे लोग नहीं हैं जो कि क्या क्या भी नहीं जानते। वे लोग विद्वान हैं और वे बातों को जानते हैं। वे दिन रात उन लिपटी हुई पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि क्या सही है। मैंने उन्हें तैयार किया है। वे सारे 400 के 400 एक ही विचारधारा में खड़े हैं, कह रहे हैं, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। परंतु यदि मैं कुछ मिनटों के लिए यहोशापात के मस्तिष्क को पढूं, कुछ वहाँ है जो कि नियमक नहीं लगता। वो कहेगा, यहाँ कुछ है जो कि सही प्रतीत नहीं होता। क्या यहाँ कोई और नहीं है? ओ, उसने कहा, हाँ, यहाँ एक और है, परंतु वो इस संस्था से संबंधित नहीं है। वो भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, वो बस घुमक्कड़ है, वो याकूब के समान है। परंतु हम उससे पूछ सकते हैं। वे कहते हैं कि वो भविष्यवक्ता है, परंतु मुझे संदेह है क्योंकि वो सदा मुझे कोसता रहता है, ये वो या कुछ भी कहता रहता है, या मेरे लिए कभी भी अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता। वो कैसे कर सकता है, समझे? इसलिए उन्होंने कहा, जाओ उसे ले आओ, वो इम्ला का पुत्र है। इसलिए जाकर वे इसे ले आए, और कोई उन्हें मार्ग में मिला कहा कि तुम भी वही कहना जो वे कहते हैं। आपको संस्था से सहमत होना चाहिए, यदि तुम नहीं होते तो तुम पर हाय। उसने कहा, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में कहने के लिए डालेगा, और इसे छोड़ कुछ नहीं। पहले कि वो वहाँ पहुँचता और उन्होंने उसे एक रात्रि दी, उसने कहा, जाओ, परंतु मैं इसराइल को भेड़ों की नई तितर बितर देखता हूँ जिसका कोई चरवाहा ना हो। और आहब ने कहा, क्या मैंने तुझे ना बताया था? अब वहाँ 401 के विरुद्ध थे, 400 प्रशिक्षित, तेज शिक्षित, बुद्धिमान लोग, एक छोटे से उपेक्षित, जैसे कि हम उसे मिकाया कहते हैं, एक मनुष्य। परंतु फिर भी उस एक मनुष्य के पास प्रभु का वचन था जिसने भिन्नता बना दी। उनमें से प्रत्येक गलत था, ये गलत सिद्ध हुआ। मिकाया इतना भिन्न क्यों था? क्या उसे भिन्न होने के लिए निर्धन बनना पड़ा? नहीं। मिकाया को किसने भिन्न बनाया? वो वचन के साथ स्थिर रहा। जहाँ वो स्थिर था वो परमेश्वर का वचन था। अब इन दिनों में ये प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। ये डैनियल के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। उन दिनों के लोग, जब पत्थर मूरत के पैरों पर आकर लगता है, लोग जो जानते हैं कि उनका परमेश्वर महाकार्य करेगा। भविष्यवाणी के बाद भविष्यवाणी, और सारे धर्म विद्यालय, संसार इसे बाहर नहीं निकाल सकता। जो भी हो, परमेश्वर इसे करने जा रहा है और लोग इसका अनुकरण करने जा रहे हैं, समझे? वो शारीरिक और स्वाभाविक कलीसिया और अलौकिक कलीसिया, आप देखिए, वचन भिन्नता लाता है। यही है जो याकूब ने सोचा, इससे कोई मतलब नहीं जो मैं जानता हूँ, मैं कभी भी आशीषित नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस जन्म सिद्ध अधिकार को ना ले लूँ। ये जन्म सिद्ध अधिकार वही है जो मैं लेने जा रहा हूँ कि पकड़ लूँ। और परंतु एसाव ने इससे घृणा की, और उसकी संतानें आज के दिन भी वही कर रहे हैं, वे इससे घृणा करते हैं। ये सदा ऐसा ही रहा है। जब कभी कोई बेदारी हुई, ये सदा दो उत्पन्न करती है। ये असभ्य टिप्पणी है, परंतु ये सत्य है। जब इजहाक और रिबका के द्वारा जन्म हुआ था तो उसने दो उत्पन्न किए। जब संसार रचा गया था तो दो उत्पन्न हुए, दो वृक्ष। और इसने दो उत्पन्न किए, केन और हाबिल जन्मे थे। जब इश्माइल और इजहाक जन्मे थे, इसने दो उत्पन्न किए। और जब एसाव और याकूब जन्मे तो इसने दो उत्पन्न किए, इनमें से एक स्वाभाविक, एक उनमें से संसार का, दूसरा वाला अलौकिक। और एक ने स्वाभाविक चतुराई पर दृष्टि रखी और दूसरा आत्मा के द्वारा चला। ये सदा से इसी प्रकार रहा है। जब लूथरन कलीसिया आई, पहले हम पेंटिकॉस्ट को लेते हैं, पेंटिकॉस्टल के जन्म को देखिए, कि एक महान शक्तिशाली बेदारी को लाया जिसे सारा संसार जानता है कि ये सारे संसार में छा गया, पेंटिकॉस्टल। ये पेंटिकॉस्टल के बाद अधिक नहीं चला, जब तक कि पौलुस ने भी कहा, उनके मध्य में से विकृत बातों के साथ लोग उठ खड़े होंगे और लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। और उन्होंने ठीक यही किया, इसने दो को उत्पन्न किया। जब लूथरन कलीसिया का जन्म हुआ, मार्टिन लूथर आत्मिक बेदारी लाया, अधिक नहीं चली जब तक कि उसके पीछे एसाव नहीं आया और उसे संस्थागत नहीं कर दिया, और इसने दो उत्पन्न किए। तब इसके पश्चात मेथोडिस्ट आए, जॉन वेस्ली, एक आत्मिक बेदारी, और उसके पश्चात संस्था आई और इसे संस्थागत कर दिया, और इसने दो को उत्पन्न किया। और इसके बाद पेंटिकॉस्टल बेदारी आई, और अब वे संस्थागत हो गए, और अब वे संस्था में व्यवस्थित हो गए, और इसने दो को उत्पन्न किया। परंतु जीवित परमेश्वर का आत्मिक बीज, यद्यपि उसे परदेशी और घुमक्कड़ होना पड़ा, यह हमेशा अलगाव का कारण रहा है। एसाव याकूब के साथ अधिक न रह सका। जैसे ही याकूब ने जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, परमेश्वर की महिमा हो, उसे अलग होने के लिए बुलाया गया। और जब एक मनुष्य, मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं, यदि ये शारीरिक है और आपके संबंधी जिनके साथ आप चलते हैं, जिनके साथ आप ताश खेलते और आपके साहित्य परिषदें और आदि आदि, जब आप जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, वो जो आपके हृदय के अंदर जो परमेश्वर के लिए भूखा था, जब आपने उसे प्राप्त किया तो उसने अलगाव के लिए बुलाया, उनके मध्य में से निकल आओ और तुम अलग रहो। परमेश्वर ने कहा अलगाव। कलीसिया व्यवस्थित होती है। देखिए, ये आगे नहीं जा सकती। आज ऐसा शारीरिक विश्वासी का एक अच्छा प्रतीक है, कभी भी संसार पर जयवंत होने के योग्य ना हुआ। वो संसार की बातों पर जयवंत नहीं होता। वे अब भी अपनी पान गोष्ठियों को पसंद करते हैं, अपने नाचों को, अपने विशेष श्रृंगार, और स्त्रियां अपने मुखों पर और अपने बाल कटाती हैं और अपने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, और पुरुष स्नान गाह में जाना पसंद करते हैं और धूम्रपान करना और कुछ गंदे चुटकुले कहना, और तब भी कलीसिया से संबंधित हैं। वे कभी भी उन बातों पर जयवंत होने के योग्य न हुए, न ही कभी ऐसा हो, परंतु फिर भी धार्मिक बने रहना, उसे बुद्धिमानी की विचारधारा पर टिकना है। यही चीज आज कलीसिया करती है। हम संस्थागत हो जाएंगे, हम अपने को एक साथ कर लेंगे, हम एक दल या गुट या कुछ इस प्रकार का बनाएंगे, और आज इसी प्रकार से कलीसिया चल रही है। आत्मिक और शारीरिक अब भी वैसा ही है, ये नहीं बदला और कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर होने के नाते स्वयं को दर्शाता है। यदि कोई पापी ना था तो कभी भी बचाने वाला नहीं होता। वो आरंभ से ही बचाने वाला था, इसलिए कुछ भी नहीं खोया था, और उसके अपने गुण एक बचाने वाला होने के नाते पापी को प्रक्षेपित किया। वहाँ कुछ होना चाहिए कि बचाया जाए। इससे पहले कि कुछ बचाया जा सके तो किसी चीज को नष्ट हुआ होना चाहिए, और उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता। यदि कभी कोई बीमार व्यक्ति नहीं होता तो वो कभी भी चंगा करने वाला नहीं होता, परंतु आरंभ से और आरंभों के आरंभ, वो आरंभ से पहले था, वो चंगा करने वाला था। इसलिए कोई बीमार नहीं था, इसलिए एक बीमार व्यक्ति को प्रेक्षित किया ताकि वो उन्हें चंगा कर सके, कि स्वयं को चंगा करने वाला बनाए। और ठीक उसी पवित्र क्षेत्र से जहाँ से उद्धार आता है, श्राप आता है, उन्हीं एक माता और पिता से जिससे याकूब बाहर आया, एसाव निकला। समझे, ये परमेश्वर है, वो अपनी योजना को बदल नहीं सकता, उन्हें उसी प्रकार चलना होगा। सारी प्रकृति ठीक इसी के समानता में है, इसे होना है। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? ठीक उसी में घटित होता है। बचने के लिए किसी को नष्ट होना है, और यदि वहाँ वो नहीं होता, उसने बचाने वाला होने के नाते ये बनाया। गहराई गहराई को पुकारती है, उस छोटे लड़के के समान जिसके विषय में मैं हमेशा बताता हूँ, पेंसिल पर से रबड़ खाता है, साइकिल पर से पैडल, उसे सल्फर की आवश्यकता है, और जब वहाँ उसमें कुछ है जो सल्फर की लालसा करता है, तो पहले कहीं पर सल्फर बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले कि उसमें लालसा हो, कहीं सल्फर होना चाहिए, और इसने सल्फर ने उसे प्रेक्षित किया, तब वो सल्फर के पास गया। इस प्रकार से परमेश्वर एक बचाने वाला है, और कुछ होना चाहिए कि नष्ट हो उसके बचाने के लिए, कि उसे एक बचाने वाला बनाए। सब कुछ यही कर रहा है, ये परमेश्वर कर रहा है। हर चीज सब कुछ उसमें है, ना कि प्रचारक में, ना कि कलीसिया में, ना संस्था में, परंतु परमेश्वर में, ताकि चुनाव सिद्ध हो सके। समझे, ये उसमें है। जी हाँ, लूथरन। और तब हम दूसरा अलगाव देखते हैं, ये अब्राहम और लूत का था। वे भाई थे, परंतु लूत संसारिक विचारों का था। वो सदा किसी बड़ी चीज के लिए बाहर रहा। बहुत सी नुमाइशों में ये है, बंदर के समान, जैसा कि मैं कहता हूँ, सदा चमकदार चीजों के लिए पहुँच करना। आज भी उस आत्मा ने लोगों को नहीं छोड़ा। वे कोशिश करेंगे, वे नगर को जाते हैं, और वे इस प्रकार की कुटीर में नहीं आएंगे। समझे, वे नगर का सबसे बड़ा आराधनालय चाहते हैं, सबसे बुद्धिमान पादरी, जहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहने वाले लोग जाते हैं, जहाँ नगर का मेयर जाता है। ये अब भी वही एसाव का आत्मा है। आरंभ में जब बुलाया गया था तो उनके पास जन्म सिद्ध अधिकार उनके पास था, और स्वयं को उन्होंने कलीसिया कहा, परंतु ये उन्होंने खो दिया क्योंकि उन्होंने इसे तुच्छ जाना। आप उन लोगों को उनके घुटनों पर नहीं ला सकते और रोते हुए और परमेश्वर से विनती करते हैं और बाहर जाकर चंगाई सभा करते हैं और संसार की पीड़ा में स्थिर रहते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और वे उसे नहीं करते, वे इसका तिरस्कार करते हैं, वे इसे पवित्र शोर मचाने वाला कहते हैं। केवल वही जो बाइबल ने कहा वे वही करते हैं, वे इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनका स्वभाव है, ये स्वभाव है उस कौवे और पंडुकी के समान, दो स्वभाव। वे इसकी लालसा करते हैं क्योंकि वे वही हैं, वो किसी और को नहीं देखेंगे, कभी नहीं, क्योंकि वे उसे देखने के लिए जन्मे ही नहीं है। और दूसरा वाला, आप उसे इससे अलग नहीं रख सकते क्योंकि यह परमेश्वर का चुनाव है, वो आत्मिक पुरुष या स्त्री होने के लिए जन्मा है, इसमें कुछ है जो उसे इसके लिए पुकारता है। ओ, मैं आशा करता हूँ कि ये उस स्थान पर पहुँच जाएगा जहाँ आप इसे देख सकते हैं, मेरा अर्थ इसे पूरा करने के द्वारा है। अब अब्राहम, स्मरण रखें, जहाँ तक वे एक दूसरे से संबंधित हैं, संसारिक कलीसिया और आत्मिक कलीसिया, वे कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। याकूब जब तक स्वयं को एसाव से अलग नहीं करता कभी भी आशीषित नहीं हुआ, और अब्राहम भी तब तक आशीषित नहीं हुआ जब तक वो लूत से अलग नहीं हुआ। वहाँ नीचे लूत की अपनी कलीसिया में छोटी प्रार्थना सभा थी, अपने पुत्र पुत्रियों और उन्हें सिखाता था, परंतु उसने ऐसा जीवन जिया जब तक उसने अंत समय के विषय में बातें करी और आदि आदि वे उस पर हंसे। वही बात आज है, आप दिव्य चंगाई और परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में बात करते हैं और आदि आदि वे इस पर हंसते हैं। वही आत्मा, ये दो महान आत्माएं धार्मिक रूप में, उनके पास संसार है, विश्वासी अविश्वासी, विश्वासी और बनावटी विश्वासी, एक दूसरे की नकल करती हैं। अब जब अब्राहम ने स्वयं को अलग कर लिया, क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय में बोलता है? उसने कहा, जैसे नूह के दिनों में था, वे खाते पीते ब्याह और ब्याह में लेने देने को करते, परंतु जब वो लूत के दिनों के लिए बोला, उसने इसके विषय में कुछ नहीं कहा। जैसे लूत के दिन थे, ये प्रकाशन के लिए है। ध्यान दें, लूत के दिनों में क्या घटित हुआ? वहाँ लूत नीचे सादोम में था, बुद्धिमानी के साथ भली भांति रह रहा था, उस नगर के विशिष्ट व्यक्तियों में से एक हो गया था, न्यायी फाटक पर बैठता था और लोगों का न्याय करता था। उसकी पत्नी उन सब समाजों से संबंधित थी जो उस नगर में थे, और उसकी पुत्रियाँ वे सब प्रसिद्ध लोगों से, बुद्धिमानों, उच्च शिक्षितों में विवाह करते, तेज तरार। और अब्राहम तंबू में बांझ के वृक्ष के तले रहा करता था, परंतु एक दिन उन दोनों की भेंट हुई और वहाँ एक बुद्धिमान प्रचारक नीचे गया और प्रचार किया और उन्हें बाहर बुलाया, संदेश की ओर देखा। उसने लूत से कहा, बाहर निकलो, और यदि अब्राहम की कृपा दृष्टि नहीं होती तो वो कभी भी बाहर ना बुलाया जाता। कहा, क्या यदि 50 मनुष्य मिले तो क्या तू छोड़ देगा? क्या मुझे 30 मनुष्य मिल सकते हैं? क्या यदि 10 मिले? वो इतनी ही दूर जा सकता था और वो उनमें से 10 भी ना पा सका। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे कि नूह के दिनों में था। ध्यान रखें, नूह कलीसिया का प्रतीक नहीं था, हनोक था। वो पीड़ाओं में से होकर नहीं निकला, परंतु पीड़ाओं के आरंभ होने से पहले उसका रूपांतरण हो गया था। हनोक घर चला गया, वो पीड़ाओं में से नहीं निकला, नूह उनमें से होकर निकला। अब जरा ध्यान से दे, जब हम इसमें जाते हैं, ध्यान दें कि अब्राहम और उसके परिवार को किस प्रकार का चिन्ह मिला, उन्हें अलौकिक चिन्ह मिला। अब्राहम, उसे कैसे मालूम हुआ कि वो अब्राहम है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसे कैसे मालूम हुआ कि वो विवाहित था या उसके पास सारा पत्नी थी? वो तंबू में है। अब एक मनुष्य वहाँ बैठा हुआ है, मांस खा रहा है, दूध पी रहा है और मक्के की रोटी खा रहा है। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसे ये बात कैसे मालूम चली? इस पर सोचिए। आप आत्मी लोग कहते हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे मालूम चला, जबकि वो एक अपरिचित के समान व्यवहार कर रहा था, उसके कपड़ों पर धूल थी। और जब अब्राहम ने कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है, और उसने कहा, मैं व्यक्तिगत सर्वनाम, मैं, ये मनुष्य परमेश्वर स्वयं को देह में प्रकट कर रहा है, परमेश्वर। अब्राहम ने उसे एलोहिम कहा, मैं तुझसे मिलने आने वाला हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा हूँ, और जीवन के समय के अनुसार मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ, और तेरे पास ये लड़का होगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा। और अब्राहम 100, सारा 90 की थी, और सारा पीछे तंबू में थी, लगभग 4 छोटे छोटे तंबू, विशेष तंबू के पीछे पीठ किए बैठा था, पर्दे के पीछे वो सुन रही थी, उसने ये सुना। और उसने अपने हृदय में वो मुस्कराई, मैं 100 वर्ष की बूढ़ी और मेरा स्वामी उसका पति मेरा बूढ़ा पति, और सोचती है कि हमें युवा विवाहों का आनंद फिर से मिलेगा। वो ये कैसे हो सकता है? और वो एक प्रकार से मुस्कुराई, उसकी पीठ तंबू की ओर थी, और उसने कहा वो क्यों हंसी? ओ भाई, आप यहीं पर हैं। संसारिक कलीसिया को देखिए, उन्हें सुसमाचार प्रचार किया गया, आधुनिक बिली ग्राम, और वे वहाँ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, इसमें से बाहर निकलो। परंतु क्या वे आए? नहीं, बहुत थोड़े से। अब्राहम के झुंड पर ध्यान दो, बाहर बुलाए हुए लोग, अब ध्यान दें। और उसने उसे ये चिन्ह दिया, और उसने उसका विश्वास किया, और वो उसके सामने से अंतर ध्यान हो गया और चला गया। और ये कैसे, ये सदा से अलगाव रहा है, बाहर बुलाए हुए। अब ये दो आत्माएं, अब आपके साथ जल्दी करूं कि उस बिंदु पर पहुंचूं जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये दो झुंड आपस में इतने घनिष्ठ संबंधित हैं, इन सारे युगों में से होते हुए, बिल्कुल आरंभ के समय से ही, संसारी कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, वे पुराने नियम में और नए नियम में थे, वे आज भी हैं। और अब लगभग 2000 वर्ष पहले ये चोटी पर आ गया, और ये दो मनुष्यों में आगे बढ़ा, उनमें से एक यीशु मसीह, दूसरा यहूदा स्क्रूति। अब यीशु अपने दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है कि ये दोनों आत्माएं बहुत ही भिन्न होंगी जो वे पहले थी। अब यहाँ जहाँ मैं आपको महिमामय वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, ये दोनों आत्माएं भिन्न होने जा रही हैं, क्योंकि शैतान आकर एक मनुष्य में रहा जो कलीसिया का सदस्य था, यहूदा स्क्रूति संसारिक कलीसिया में रहा और सारे समय कलीसिया का मित्र रहा, परंतु वो अंदर आया और धोखा दिया, या सोचा कि वो अपने भाई को धोखा दे रहा है। वो अंदर आकर उनका अंग बन गया, परमेश्वर की भली वस्तुओं का स्वाद चखा, और ऐसा लगा कि साथ साथ चल रहा है, और बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार किया और प्रेत आत्माओं को निकाला। परंतु उसके अंदर वो आरंभ से ही यहूदा था। बाइबल ने कहा वो विनाश का पुत्र होकर जन्मा। अब स्मरण रखें, वहाँ एक संसारी कलीसिया है, वो ऐसा फरीसी और सदूकी। परंतु ध्यान दें, ये व्यक्ति जो स्वयं को सोचता है कि वो संदेश के साथ कुछ क्षण चलेगा, परंतु वो इसमें अपना हाथ अधिक नहीं डालना चाहता। इन आत्माओं को देखो, यीशु ने कहा ये मूल के इतने समीप होगा कि ये चुने हुए को धोखा दे दे। चुने हुए, यदि आप इस पर ध्यान देंगे, यदि संभव हुआ तो, परंतु ये संभव नहीं है। देखिए, ये धोखा देगा। अब ध्यान दें, केवल संसारिक कलीसिया नहीं, एक कलीसिया जो वहाँ निरंतर शारीरिक कलीसिया रही, एसाव का झुंड। अब हमारे पास यहूदा का त्रिएकतावाद का झुंड है, जो कि इतना कपटी है, यहाँ तक कपटी है कि आशीष के हाथों तक आ जाता है। जैसे कि इब्रानियों 6:10, कैसे उसने कहा, एक बार संसार की आने वाली सामर्थों का स्वाद चखने के बाद, और ये सब करने के पश्चात, और तब यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, और तब यदि वे जानबूझकर फिर जाएं, जानबूझकर, ये क्या है, वाचा के लहू को जिससे वे पवित्र किए गए अशुद्ध चीज ठहराते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, ये यहाँ है, यहाँ एक मनुष्य है, ये अच्छा व्यक्ति है, भला लड़का, उसे बुलाया गया, वो अपने हृदय में अनुभव करता है कि वो सेवक बनना चाहता है, ठीक है, वो यीशु को अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार करता है, वो एक अच्छा लड़का है, उसके विरोध में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ समय पश्चात वो पवित्रीकरण का विषय, जब वो किसी स्त्री को देखता है तो कामुक हो जाता है, वो ये उसमें है, समझे, और तब अगली बात, हो सकता है कि उसने धूम्रपान किया हो और वो धूम्रपान करना चाहता है, हो सकता है कि वो जुआ खेलना चाहता है, हो सकता है वो कुछ बुरा करना चाहता हो, वो जानता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, इसलिए वो कहता है ओ परमेश्वर मुझ पर यीशु का लहू लगा और मुझे पवित्र कर, और वो पवित्र हो जाता है। वो चिल्ला सकता है प्रभु की स्तुति हो, कुछ भी कर सकता है, और बाहर जाकर करता है। स्मरण रहे, यीशु ने कहा उस दिन इस प्रकार के लोग होंगे, बहुत से आएंगे और कहेंगे प्रभु क्या मैंने भविष्यवाणी और प्रचार नहीं किया, क्या मैंने आपके नाम से प्रेत आत्माओं को नहीं निकाला? यीशु ने कहा तुम कुकर्म करने वालों को मैं नहीं जानता। देखिए, ये वहाँ है। अब इस पर ध्यान दें, अब हम बाल के लाखवें हिस्से पर आ रहे हैं, सुसमाचार की सीधी धार पर, दुधारी तलवार से भी अधिक तेज कलेजे और गुर्दे को वार पार भेदता है। हालेलुया। परमेश्वर इसे आर पार हो जाने दे, विचारों और मस्तिष्क को जांचता है। ये सुसमाचार है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन, सुसमाचार का प्रकटीकरण। आप कहते हैं बाइबल कहती है, ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, प्रकट किया गया वचन सुसमाचार है। सुसमाचार हमारे पास केवल वचन ही के द्वारा नहीं आया, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ और प्रमाण के साथ सामर्थ को दर्शाया, सुसमाचार को जीवित प्रकट किया। जब मैं भारत गया, मेथोडिस्ट चर्च का बिशप आया और बोला, श्री ब्रणम, हम मिशनरी के विषय में नहीं जानना चाहते, हम आप लोगों से अधिक बाइबल जानते हैं जो आप लोग कभी जानते होंगे। कहा हम कलीसिया थे और आपके राष्ट्र बनने के पहले 2000 वर्ष पहले यहाँ आकर बस गए, ये ठीक बात है। परंतु कहा, हमने सुना है कि परमेश्वर ने आपसे आकर भेंट की है और वरदान लेकर आया जो कि बाइबल को जीवित कर सकते हैं। कहा हमें इसी में रुचि है ओ प्रभु। देखिए, वो मनुष्य एक पुत्र था, न कि पोता, जैसे कि दाऊद ने कहा, समझे। हम जानना चाहते हैं क्या ये सत्य है। मैंने कहा निश्चय ही ये सत्य है, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। अब उस पर ध्यान दें, स्वाभाविक कलीसिया आत्मिक कलीसिया को सताती है। अब हम पाते हैं यहूदा एक भाई की नकल कर रहा था, एक भाई, और तब आगे बढ़ गया और अंत में चरम सीमा पर आता है। अब इस नव युवक प्रचारक पर ध्यान दें, वो उस स्थान पर आता है, वो कहता है, प्रभु मैं एक स्त्री की ओर देख रहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा था, आप जानते हैं, संसार की चीजें कर रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने अपने पैसे घोड़ों की दौड़ पर खर्च कर दिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं हर रात्रि सिनेमा देखने जाता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं गंदे चित्रों का आनंद लेता हूँ और इस प्रकार की बातें, मेरे कमरे में अर्धनग्न चित्र टंगे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये संसारिक चीजें हैं, मुझे पवित्र करें प्रभु। और प्रभु ने कहा ठीक है, मैं ये कर दूंगा। वो यीशु मसीह का लहू लगाता है, उसे पवित्र कर देता है। और तब जब वो ये करता है, वो एक रात्रि वो कहीं से निकलते हुए कुछ सुनता है, वो वहाँ जाकर और सुनता है, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में सुनता है और आत्मा से भरना। तब वो इसमें देखता है, ओ प्रभु ये कितना अद्भुत है, परंतु कहता है कि ये मेरी सेवकाई को नष्ट कर देगा यदि मैंने ये प्रचार किया, इससे मेरी माँ मुझे घर से भगा देगी, वे मुझे अपनी कलीसिया से निकाल देंगे यदि मैं कभी इसमें गया, ओ अच्छा है कि मैं इसे छोड़ दूँ, परंतु मैं इसे देखूँ। जी हाँ, ये सत्य है, बाइबल है। जैसे कि कोई विशेष प्रसिद्ध सेवक संसार में सुपरिचित हाल ही में मिला, एक व्यक्ति के द्वारा जो मेरे साथ पुर्तो रिको में था, अपने घुटनों पर होकर अन्य भाषा बोल रहा था, लंदन इंग्लैंड में एक सामर्थी मनुष्य, आज के संसार का एक महान सुसमाचार सुनाने वाला। और ये व्यक्ति उसका भाई यहाँ मेरे साथ, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसके पास जाकर और बोला, ओ भाई ये ऐसा है। उसने कहा मैं ये जानता हूँ, परंतु देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। उसने कहा अभी प्रचार करो, ये वो घड़ी है, अपने प्रभाव के साथ आज संसार को हिला सकते हैं। उसने कहा नहीं, मैं ये प्रचार नहीं कर सकता, कलीसिया मुझे हटा देगी, मैं ये प्रचार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकूंगा। ओ भाई, एक बार पवित्र होकर और सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे देखकर, ये देखकर कि ये सही है और वापस चला जाए, ये देखते हुए वे परमेश्वर के पुत्र को स्वयं क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाते हैं, सुसमाचार से लजाते हैं। पौलुस ने कहा मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि उद्धार के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की सामर्थ अपनी कलीसिया में कार्य कर रही है। परंतु उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। इस मनुष्य ने कहा वे मुझे पेंटिकॉस्टल सोचेंगे, वे मुझे बनाएंगे। उसने कहा मेरा सम्मान समाप्त हो जाएगा। ओ भाई, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मैं उसके विषय में सोच रहा हूँ, उसके सम्मान के विषय में, कि वही एक है। परंतु देखिए वे इसके कितने समीप आ सकते हैं, आप जानते हैं, और वाचा के लहू को महत्व देते हैं जिससे कि वो पवित्र हुआ था, वो जिसने उसे पवित्र किया और उसे संसार से बाहर निकाला और उसे यहाँ अंदर रखने का प्रयत्न किया, और तब वो इसे देखता है और उसका ज्ञान रखता है, इससे फिर जाने के बाद तो फिर पाप के लिए कोई और बलिदान नहीं, बाइबल ने ऐसा कहा है, केवल एक भयानक न्याय की बात जोहना और जलता हुआ रोष का होना जो कि हर विरोध को भस्म कर देगा। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा कार्य है, वो जो मूसा की व्यवस्था तोड़ता था बिना दया के दो या तीन की गवाही के साथ मार डाला गया, तो फिर एक सेवक जो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदता है कितने अधिक दंड के योग्य ना होगा। उस सत्य की पहचान पाने के पश्चात और उसे अपवित्र वस्तु समझता है। हो देखिए हम कहाँ हैं। यीशु ने कहा सावधान। देखिए यहूदा कैसा था, वो ठीक उनके साथ था। वो ऐसा था जो इस युग के लिए महान था, वो धोखेबाज था, उसकी नकल करने वाला इस युग के लिए महान बन गया। वो यहाँ तक फिर से आता है, यीशु का एक भाई, एक नकली भाई, परंतु वो अपने हृदय में सारे समय उसी पुरानी शारीरिक कलीसिया के साथ था, क्योंकि वही उसने यीशु को बेच दिया, उसने यीशु को बेच दिया अपना जन्म का अधिकार, ठीक उसी प्रकार से जैसे एसाव ने उस दाल की डेगची के लिए किया। उसने अपना जन्म अधिकार 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। आज बहुत से पुरुष और महिला उन्होंने अपना आत्मिक अधिकार थोड़ी सी ख्याति के लिए बेच दिया, संसार की कोई छोटी सी चीज जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सके। कुछ साधारण स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और अपने बाल कटाती हैं, छोटे वस्त्र पहनती हैं, पुरुष लोग कुछ थोड़े से अश्लील चुटकुलों और सिगरेट पीने, संसार की कुछ चीजें। यदि आप संसार या उसकी वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं आपको आघात नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम अंत तक हैं, अब हम आगे आ रहे हैं, अब हम जल्दी ही सीढ़ी के ऊपर आ रहे हैं। देखिए ये कैसे है, वैसे करते हैं, वे इसके लिए ठहराए गए हैं, वे इसकी नकल कर सकते हैं, और इतने मीठे और नम्र, बिल्कुल मसीहों के समान, इतने समीप की चुने हुओं को धोखा दे दें, परंतु उनके फलों से आप उन्हें जान पाएंगे। एक स्त्री छोटे वस्त्र पहनकर मुझे कभी भी मसीही नहीं लगती। बाइबल ने कहा कि एक स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा और पाप की बात है। बाइबल में केवल एक स्त्री ने कभी अपना मुख रंगा था, वो इजाबेल थी। पुरुषों के विषय में क्या है, तुम पुरुषों जो मसीही पुरुष हो और अपनी पत्नियों को ये करने देते हो, जब परमेश्वर तुम्हें इस बात के लिए उत्तरदायी ठहराएगा, पुरुष नहीं संसारिक। ओ तब मैं बाहर जाऊंगा और उस कलीसिया का सदस्य हो जाऊंगा। आप इस विषय में सोचते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे पवित्र वचन कहता है कि वे करेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया और यही वे करेंगे। समझौता। किसी ने कहा बिली यदि तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम सबको भगा दोगे। एक चीज है जो नहीं जाएगी, पवित्र आत्मा, क्योंकि ये उसका वचन है और वास्तविक पहले से ठहराया हुआ विश्वासी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके प्राण के लिए ये भोज्य पदार्थ है, वो इससे प्रेम करता है, उसे इससे कोई अलग नहीं रख सकता। वो याकूब के समान कुछ भी करेगा, परंतु वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार चाहता है, वो वही स्थिर रहेगा। मैं चिंता नहीं करता कि उसे अपने सब मित्रों को छोड़ना पड़े, यदि उसे अपनी नौकरी दांव पर लगानी पड़े, यदि उसे अपनी कलीसिया की सदस्यता दांव पर लगानी पड़े, यदि उसे सब कुछ खोना पड़े, वो फिर भी उसे पकड़े रहता है, क्योंकि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें कुछ है जो उसमें हलचल उत्पन्न करता है, गहराई गहराई को पुकारती है। ओ आप वहीं पर हैं, उसमें कुछ है। देखिए आप बाइबल में कुछ पाना चाहते हैं और यहाँ से लेकर और उत्पत्ति में वापस जाते हैं और देखिए ये कहाँ प्रकट होता है, देखिए ये कहाँ पर आता है। आज की सारी आत्माएं और अभियान वापस उत्पत्ति में जाएं, इन बातों को आपको सिद्ध करने के लिए जो आप देख रहे हैं। मित्रों हमने यही किया है, इसे ना भूलें, इसे अपने सिर पर से ना निकलने दें, इसे अपने अंदर बसा लें। ये परमेश्वर की बातें हैं, ये शीर्ष पर आता है, और यीशु ने भविष्यवाणी की है कि अंतिम दिनों में ये फिर से चोटी पर आएगा और ये उसके द्वारा होगा। परमेश्वर की मोहर और पशु की छाप, दो आत्मिक शक्तियाँ एक साथ कार्य कर रही हैं। अब कोई भी जानता है कि परमेश्वर की मोहर, जन्म अधिकार, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इफिसियों 4:30 कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए हो। जब उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा नया जन्म है, हम ये जानते हैं, मैं इसका अंगीकार करूंगा कि आपने आत्मा से जन्म पाया है। परंतु जब तक आप नया जन्म ना पाओ, माँ के गर्भ में बालक जन्म लेता है, उसमें एक प्रकार का जीवन होता है, वो जीवन है और उसका छोटा सा और उसके शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं मचलती और पैर चलाती और इस प्रकार से कूदती हैं। परंतु जब वो जन्म लेता है तो उसे इस प्रकार से एक और चीख निकलती है और वो जीवित प्राणी बन जाता है। और बालक कलीसिया में जा सकता है और कहता है, ओ मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा और मैं एक भला हूँ, मैं ठीक ठीक करना चाहता हूँ। परंतु सुसमाचार का चाटा अवश्य है कि उसे जगा दे कि अनंत जीवन के लिए चीख उठे और पवित्र आत्मा उसमें चिल्लाए जैसे कि पहले कभी ना चिल्लाया हो। तब वो आत्मा से जन्म पाया हुआ नई सृष्टि हो जाता है, तब बढ़ने हिलने और उसका जीवन परमेश्वर में होता है। देखिए, जैसे कि बालक, प्राकृतिक बालक उसका जीवन संसार में होता है, तब यदि पृथ्वी का ये डेरा गिराया गया तो हमारे पास एक और प्रतीक्षा कर रहा है। देखा, ठीक जैसे निश्चित रूप से शारीरिक देह सामने आती है माँ की देह से, तो वो आत्मिक देह उसे ग्रहण करती है। और जब ये माँ से उत्पन्न होती है, पृथ्वी जो कि अब उसके माँ के गर्भ में है, कर रहती और चिल्लाती है, ओ परमेश्वर, कर रहती, तड़पती, पूरी होती और बीमार, और उसमें सब कुछ होता है, और उसके अंदर की आत्मा नदी के उस पार देखती है, वो कर रहती, ऐंठती, कूदती है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि उसमें एक जीवन है जो सदा जीवित रहता है, ये उस देह में है जिसे मरना है। और कभी कभी जैसे माँ शारीरिक देह को जन्म देती है और आत्मिक देह उसे ले लेती है, पृथ्वी की देह गिर जाएगी और शारीरिक देह गिर जाएगी और भौतिक देह यानी स्वर्गीय देह इसे वहाँ से ले लेगी। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिरेगा तो हमारे पास एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यही कारण है कि आप संसार की चीजों को भूल जाते हैं, ये आपके लिए मरी हुई है, वहाँ आत्मा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, दो आत्माएं, हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा नया जन्म है, ये परमेश्वर के आत्मा से फिर से जन्म लेना है। आप आत्मा से इस प्रकार से जन्म लेते हैं, आत्मा से जन्म लेना ये नया जन्म है। ठीक है, आप आत्मा से जन्म लेते हैं, तब जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। ठीक बात, जब ये दोनों इस पृथ्वी पर हैं, शारीरिक और आत्मिक, कभी कभी मैंने ये देखा है। अब मैं इसके अंत में आना चाहता हूँ कुछ मिनटों में, ये कहते हुए, शारीरिक या आत्मिक कोई सा भी एक, अब मैं आशा करता हूँ कि आप में से प्रत्येक ने से समझ लिया है। अब बिल्कुल शांत और आदरणीय भाव में रहें जितना आप हो सकते हैं। अब क्या आपने कभी ये देखा है? आज आप ये हमारी कलीसियाओं में देखते हैं, यहाँ तक कि झुंडों में, जहाँ हम स्वयं को अलग करके और संगठन बनाते हैं और हम ये सब देखते हैं, और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एक विशेष पवित्र वचन लेता है और भाई वो मनुष्य पवित्र वचन लेकर और उसे नया जीवन देता है और उसे ठीक बाइबल में दी गई प्रतिज्ञा से जीवित करता है, और अगला मनुष्य उसे ये करते देखेगा और वो भी आकर इसे करने का यत्न करेगा और असफल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये पढ़ रहे हैं, वो असफल होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन उसे प्रेरित नहीं करता, वो केवल नकल का यत्न कर रहा है, वो किसी के समान कार्य कर रहा है, वो नहीं था। ठीक है, हो सकता है वो मनुष्य के द्वारा भेजा गया था, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम भी यही चीज कर सकते हो। देखिए, जैसे कि यीशु ने कहा कि ये उसी प्रकार होगा, अंत के दिनों में बाइबल ने ये भविष्यवाणी की, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, वहाँ मूसा खड़ा है, वहाँ यम्ब्रेस खड़ा है, और मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वो सर्प बन गई। क्यों? फिरौन ने कहा, यम्ब्रेस तुम यहाँ आओ, तुम भी ये कर सकते हो। देखिए, उसने यही किया, परंतु क्या हुआ? तब मूसा की लाठी ने उसकी लाठी को खा लिया। देखिए, ये प्रकट हो गया, उसकी लाठी कहाँ थी? जैसे कि उच्च कोटि की संवेदी अवगम्यता, ये किसी प्रकार एक प्रेत आत्मावाद या इन्हीं किसी कलीसियाओं के समान है जो संसारिक रीति पर विश्वास करते हैं। उनकी बातें, वे कहते हैं क्यों ये किसी और दिन के लिए हैं, वे कुल मिलाकर बाहर हैं, परंतु अंतिम दिनों में इस आत्मा पर ध्यान दें जो कि वास्तविक आत्मा की नकल करती है। समझे, यहाँ आपके पास परेशानी आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे ये वास्तविक हो, देखा, परंतु ये उसे प्रकट नहीं कर सकती, ये उसे अंततः थामे नहीं रह सकती। ओ परमेश्वर, लोग आते हैं और कहते हैं मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, देखिए वे कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, ये एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक नहीं रहती, एक सभा से दूसरी सभा, ये प्रकट हो जाता है कि उनके पास नहीं है। यदि एक पुरुष या महिला परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेते हैं तो उनमें आत्मा के फल होते हैं। वे भक्ति भाव में चलते हैं, वे जीवन जीते हैं, समझे, वे संसार की चीजों से अलग रहते हैं। परमेश्वर उनमें चलता है और स्वयं को प्रकट करता है और सिद्ध करता है कि वो वहाँ कार्य कर रहा है, दूसरा नकल मार रहा है, समझे। नकल पिछले सारे युगों से नकल होती आई है, देखिए इश्माइल और इजहाक, और इसी प्रकार से होता आया है नकल। मूसा भविष्यद्वक्ता को देखिए और बालाम भविष्यद्वक्ता को देखिए, समझे, देखिए वे कैसे आए। यहूदा को देखिए, यीशु को देखिए। यीशु ने भविष्यवाणी की ये पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में परमेश्वर की मोहर होगा। अब पशु की छाप क्या होगी? परमेश्वर की मोहर को अस्वीकार करना, क्योंकि वे सब जिनके पास परमेश्वर की मोहर नहीं है उनके पास पशु की छाप होगी। और यदि ये दो आत्मिक मोहरें हैं तो उनमें से एक परमेश्वर की सच्ची मोहर होगी और दूसरी वाली धर्म त्याग की। क्या आप इसे देख सकते हैं? पुराने नियम में मोहर को देखिए, जब तुरही जुबली पर फूंकी गई, हर कई वर्षों के पश्चात तुरही के बजने के कारण गुलाम स्वतंत्र हो जाते थे। हर वो व्यक्ति जो स्वतंत्र होना चाहता था जा सकता था, परंतु उनमें से कुछ वे गुलाम बने रहना चाहते थे, इसलिए वे उन्हें वेदी पर आराधनालय के द्वार पर ले जाते थे और उनके कान को सुतारी से छेद देते थे और उनको सदा के लिए चिन्हित कर दिया जाता था। वे सदा उस स्वामी की सेवा करते थे। और आज आप सत्य पर सुसमाचार का संदेश सुनेंगे। अब यदि आप चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, परंतु जब आप उस किनारे की रेखा पर आ जाते हैं और देखते हैं और सत्य की समझ लेते हैं और तब वापस फिर जाएं, तो वो आपके कान में छेद कर देता है और आप सदा ज्ञानवान विश्वासी हो जाते हैं। आप धार्मिक होंगे और आराधना ले जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा कभी प्राप्त नहीं करते। देखिए, तब आप अपने बाकी दिनों में यही सेवा करते हैं। अब पशु की छाप या परमेश्वर की मोहर, और हम बहुत ही समीप आ रहे हैं। अब देखिए, वचन को प्रेरित होना चाहिए, इसे सुने, इसे पहचाने और उसका आचरण करें। बहुत से लोग सुनेंगे परंतु इसे पहचानेंगे नहीं। परमेश्वर कहेगा, तुम्हारे लिए ये घड़ी है। मैं पवित्र शोर मचाने वाला नहीं होऊंगा, मैं उनमें से कोई नहीं होना चाहता। देखिए, वे इसे नहीं पहचानते। हम सभाओं में जाएंगे, वो महान पवित्र आत्मा नीचे आएगा। उस दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था जब दर्शन मिला, और जो मैंने कहा ठीक वही भविष्यवाणी की। यहाँ एक युवा पुरुष आता है, यहाँ आता है, उस जल को हिलाता है। आपको हृदय रोग है और आप उसे ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो महिला यहाँ आ रही है। आपकी छाती में फोड़ा है और ये बाईं ओर है, और आपकी दशा बहुत खराब है और आप पापी हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। वे वहाँ बैठे हुए हैं, चारों ओर देख रहे हैं, प्रचारक और सारे के सारे। कहा, ओ प्रभु, सभा में जाते हैं, पवित्र आत्मा को सभा में चलते हुए देखते हैं और हृदय के गुप्त विचार और बातों को बताता है। इस प्रकार से कहते हैं, जी हाँ, आश्चर्यजनक, समझे। ओ भाई, देखा, ये दूसरी ओर है, वहाँ कुछ घटित हुआ है। स्त्रियाँ इसी कार्य को करती जाएंगी, पुरुष और स्त्रियाँ इसी प्रकार से करते चले जाएंगे, जैसे सुवर्णी कीचड़ में और एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर वापस जाता है, ठीक उसी प्रकार। क्या आप नहीं देखते? अब मैं बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, आपको अनुभव करना चाहिए कि आप किस दशा में हैं। यही कारण है कि मैंने ये टेप कहा कि केवल कलीसिया के लिए है। देखा, केवल कलीसिया के लिए। यदि आप उजियाले में से बुलाए गए हैं, अंधकार में से उजियाले में बुलाए गए हैं, मृत्यु से जीवन में, मसीह का औपचारिक बुद्धि वाला विचार, नया जन्म का अनुभव, और आपके जीवन को ध्यान से देखता है, जो कि संसार की वस्तुओं को एक ओर कर देता है, और चाहे कुछ हो, आप मसीह के पक्ष में खड़े रहते हैं, तब कुछ घटित हो गया, समझे। आप में कुछ है जो इच्छा और हलचल कर रहा है, जैसे कि ये याकूब में था। देखिए, आप प्रभु से युद्ध करते हैं, आपकी चाल भिन्न है, आप में कुछ भिन्न है, आप बदल गए हैं। अब ये इससे पहले ये हो सके, इसे आपको प्रेरित करना है। मैं चिंता नहीं करता, मैं ये खड़े होकर तब तक प्रचार कर सकता हूँ जब तक मेरे बचे बाल भी ना उतर जाएं, जब तक मेरे कंधे ना झुक जाएं, मैं 90 वर्ष का हो जाऊं और आप प्रतिदिन सुने, जब तक परमेश्वर आप पर इसे जीवित ना करे, आप अब भी उसी दशा में हैं। 2 दिन से मैं इस पर अध्ययन और प्रार्थना कर रहा था, समझे। मैंने कहा, प्रभु, क्या मैं ये कलीसिया से कह दूं? किसी चीज ने कहा, इसे कह दे, समय समीप है, इसे कह, मैं अनुभव करता हूँ कि वो मुझे जल्द ही अलग कर देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जान लें। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही पहले होकर उसे न खींच ले। ओ मैं जानता हूँ कि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास परमेश्वर है और अब्राहम तुम्हारा पिता है, परंतु मैं तुम्हें ये बताता हूँ तुम्हारा पिता शैतान है। यीशु ने ये धार्मिक लोगों, याजकों और महान लोगों से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। समझे, आत्मा के फलों पर ध्यान दो। अब देखिए, इसे आपके लिए जीवित होना है। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि नूह कह रहा हो, आप जानते हैं क्या, कि यह हो सकता है कि किसी दिन वर्षा हो जाए, इसलिए मैं जरा जाकर और अपने लिए एक नाव बना लूं। यदि वर्षा होती है तो मैं नाव में चला जाऊंगा और फिर वहां से चला जाए और मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं नाव में जाने ही वाला हूं, और फिर कहीं और चला जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। यदि ऐसा होता, ओ हो सकता, चुने हुए अब इसे सुन ले, यदि ये ऐसा था जैसा कि बाइबल ने कहा, पहला उपहास उड़ाने वाला व्यक्ति आता, वहाँ उसका उपहास उड़ाया गया, तो वो अपना हथौड़ा नीचे रख देता और चला जाता, जैसा कि आज लोग करते हैं। वे यीशु के साथ चलना आरंभ करते हैं और जब वे उधर देखते होंगे और सत्य को देखते हैं तो वे इससे पीछे हट जाते हैं, वे इस पर स्थिर नहीं रह सकते। उस जाने माने सुसमाचार सुनाने वाले ने जैसे कहा, ये मेरी सेवकाई को खराब कर देगा। मैं चिंता नहीं करता सेवकाई के लिए कि पवित्र आत्मा खराब कर देगा, इसे तो समाप्त होना ही चाहिए। परंतु अब देखिए, ये बहुत से लोगों के लिए घमंड है, बहुत से लोगों के लिए। ओ इसमें अब ध्यान दें, नूह बाहर मैदान में था और उसने सुना, उसने पहचाना और अनुकरण किया। कोई मतलब नहीं कितने भी उपहास उड़ाने वाले आए, उसने सही वही बनाया। नूह तू पवित्र शोर मचाने वाला है, मुझे इससे जरा भी परेशानी नहीं, बनाओ। उसने ये सुना था, उसने इसे परमेश्वर का है करके पहचाना और पवित्र शास्त्र से आका, और ये इस प्रकार था, उसने चाहे जो हो नाव को बनाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कभी इसकी कल्पना कर सकते थे कि मूसा जब मिस्र के लिए अपने मार्ग पर था, एक दिन बाहर जाकर अपनी पत्नी जिपोरा से बोला, जिपोरा तुम्हें मालूम है क्या कि मैंने अपनी भाषा मधुर बना ली है, मैंने अपना थोड़ा सा गणित ले लिया है और सब ठीक कर लिया है, थोड़ा बीजगणित और बहुत सारी बातें और मेरी शिक्षा, जब से मैं इन भेड़ों को चरा रहा हूँ मैंने इनमें से बहुत कुछ को सुधार लिया है। मैंने मिस्र में गलती कर दी थी, मैं सोचता हूँ मैं जाकर सुधार करूँगा, मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा। नहीं, पहली लहर उसके विरुद्ध आई तो वो वहीं गिर जाता। उसने क्या किया? वो जितना भी बीजगणित कभी जानता था तब भूल गया और अपनी बुद्धिमानी को, यही था जिससे उस पर संकट पड़ा। आज कलीसिया को इसी ने संकट में डाल रखा है, बिना आत्मा का नया जन्म पाए बहुत सारे शिक्षित प्रचारक, पुरुष और महिलाएं वे बुद्धि वाले प्रचारकों को सुनना चाहते हैं, बजाय यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के। इसी ने आज हमें परेशानी में डाल रखा है। हम प्रचारकों के लिए हाई स्कूल और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर द्वारा बुलाए गए मनुष्य की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा से भरा हो, ना कि मनुष्य द्वारा बनाई गई शिक्षा और नामधारी। हमें परमेश्वर द्वारा बुलाए गए मनुष्य की आवश्यकता है। मूसा भेड़े चरा रहा था और बस गया था और भूल गया था। वो जानता था कि उसकी बुद्धि ने उसे असफल कर दिया। वो अपनी भेड़े चरा रहा था परंतु उसने सुना, अपने जूते उतार, मूसा जहाँ जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। उसने से सुना, ये क्या था? वो शब्द जो सरदूत बोला था वो पवित्र शास्त्र से था। उसने उसके पिता अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, मैं 400 वर्ष पश्चात वहाँ उनकी सुधि लूंगा और अपनी बलवंत भुजा से उन्हें निकाल लाऊंगा। वो पहचान गया, ये परमेश्वर का पवित्र वचन प्रकट हो रहा था। मैं यहाँ एक मिनट रुकूं और इसे हृदय में बसने दूं। क्या आप देख सकते हैं कि मैं आज किस विषय में बात कर रहा हूँ? परमेश्वर का वचन ठीक आपके सन्मुख प्रकट हो रहा है और आप इसका अनुभव नहीं करते। सदम अमोरा के लिए सोचिए, अंतिम दिनों में मसीह की प्रतिज्ञा के लिए सोचिए। मूसा ने इसे पहचाना कि पवित्र वचन के अनुसार है, ये एक प्रतिज्ञा थी। उसने सुना, उसने पहचाना, भाई उसके अंदर कुछ आ गया, तब वो जाकर इसे कर सका। उसने कार्य किया, वो जाकर प्रत्येक फ्रॉन को रोक सकता था, वो जब भी चाहे विपत्ति को बुला सकता था, वो लाल सागर को खोल सकता था, क्योंकि उसने सुना था, उसने पहचाना, वो परमेश्वर के स्थान पर कार्य कर रहा था। मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तू मेरा भविष्यवक्ता होगा। उसने कहा, और उसने कहा मैं इसे नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है, तू ईश्वर होगा और हारून तेरा भविष्यद्वक्ता, जो भी हो तुझे जाना ही है। उसने कभी भी ऐसे नहीं कहा ठीक है, हो सकता है मुझे वहाँ नीचे जाना ही चाहिए और बातों को ठीक करना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एलिया ने कार्मेल पर्वत पर कहा तुम जानते हो ये देश पाप से भरा हुआ है, हो सकता है मुझे जाकर आहाब को बताना चाहिए, उसे अपने पर लज्जा आ जाए, हो सकता है मुझे वहाँ पर्वत पर जाना चाहिए और बैठ गया और लंबे समय तक उपवास रखना चाहिए कि लोग परेशान हो जाएं मुझे देखते देखते कि मैं मरने तक उपवास पर हूँ। नहीं, ये वो नहीं था, परंतु उसने सुना, उसने पहचाना और उसने अनुकरण किया। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे खिलाएं, उठ और क्रेत के नाले पर जा। जब बाल और परमेश्वर के बीच प्रदर्शन का समय आया, उसने कहा जाओ अपना बलिदान ले आओ और उसके साथ कुछ भी करो, जो भी चाहो, और अपने ईश्वर को पुकारो। जब उन्होंने स्वयं को काटा और बहुत सारा मांस और ऊपर नीचे कूदे और बहुत शोर मचाया, उसने कहा और अधिक शोर करो, हो सकता है वो कहीं घूमने गया हो, हो सकता है कि वो सो रहा हो। ओ भाई, अच्छा आप जानते हैं क्या, उसने कहा मैं यहोवा में विश्वास करता हूँ, इसलिए जो भी है मैं ये कर सकता हूँ। ओ नहीं, आप इसकी नकल ना करें, एलिया बनने का प्रयत्न ना करें जब तक परमेश्वर आपको ना बुलाए। जी हाँ श्रीमान, मैं यहोवा का दास हूँ, वहाँ नीचे भी 7,000 हैं, परंतु उनमें से किसी ने ये करने का साहस ना जुटाया। तब जब उसने बैलों को काट दिया और उस पर पानी डाल दिया, उसने कहा प्रभु मैंने ये तेरी आज्ञा के अनुसार कर दिया है, कोई और भी इसकी कोशिश करता तो वो पूरी रीति से असफल हो जाता। आपको प्रेरणा होनी चाहिए, पवित्र आत्मा को आप पर प्रकट करना चाहिए। आज यही मामला है, और वेदी पर जाकर ये नहीं कह सकते अच्छा हेलुलुया हेलुलुया प्रभु मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ हेलुलुया हेलुलुया, नहीं। परंतु भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा आपको उन वचनों की प्रेरणा दे तो आप अपने स्थान को छोड़ने से पहले पालेंगे। आप में कुछ जला है, प्रचारक आपको नहीं बताएगा कि ये और वो करो, पुराने पत्ते गिर जाएंगे और नई पत्तियां आ जाएंगी। ये प्रेरणा मिली है। जब प्रचारक बाइबल में से सत्य को प्रचारता है तो आप उस पर क्रोधित ना होना, आप इससे प्रेम करेंगे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, ये आपके प्राण के लिए भोजन है। यहाँ तक कि यीशु ने स्वयं कहा मैं वो नहीं करता जो मैं स्वयं चाहता हूँ, पुत्र कुछ नहीं कर सकता परंतु वो जो पिता को करते देखता है। वे वचन वो स्वयं में इमैनुएल था, वो पृथ्वी पर परमेश्वर था, यीशु वो शरीर था जिसमें परमेश्वर ने निवास किया, वो तंबू था जिसमें परमेश्वर ने निवास किया, आमीन। परंतु इस सब में पुआनी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र इमैनुएल, आत्मा की परिपूर्णता, उसमें आत्मा की परिपूर्णता थी, और फिर भी अपनी देह में उसने कहा मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता ही मुझे पहले ना दिखा दे। उसे ये करने के लिए प्रेरित किया। शैतान ने कहा इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और आश्चर्य कर्म कर, मैं तुझे ये करते हुए देखूं। उसने कहा ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, ओ प्रभु। परंतु भीड़ जब भूखी थी, उसने 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां ली और 5,000 को खिला दिया, ओ हालेलुया। आप देखिए मेरा क्या अर्थ है, नकल करने का यत्न ना करें। आज पेंतिकोस्तलों के साथ यही मामला है, आज कलीसिया के साथ यही मामला है। बहुत सारे नकल करते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है, बहुत सारे दिव्य चंगाई की नकल करते हैं, बहुत लोग बहुत प्रभु की बातों की नकल करते हैं। आप ये नहीं कर सकते, ये चीजें चुनाव से आती हैं। परमेश्वर की बुलाहट माँ के पेट से जन्म लेने के साथ आती है। वरदान और बुलाहटें बिना प्राश्चित के हैं, ओ प्रभु ये सत्य है। आप अपने को वो नहीं बना सकते जो आप नहीं हैं। परंतु यदि परमेश्वर आपको बुलाता है तो आप संसार के धन्यवादित व्यक्ति हैं, क्योंकि उसने आपको बुलाया तब ये आपके लिए वास्तविक हो गया। जैसे कि मैं बोलता, यदि मेरे पास समय होता तो उस दिन गिलहरियों पर बोलता, मुझे लगभग मोड़ दिया, मैंने ये कभी नहीं देखा और मैं ये नहीं कर सकता। हेटी पीछे बैठी हुई मेरी ओर देख रही है, ये कैसे कभी हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। परंतु ये प्रेरणा में था, जीवित कर दिया, वचन बोला गया था और ये वैसा ही हो गया, हालेलुया। पौलुस, क्या आप उसे ये कहने की कल्पना कर सकते थे, मैं वहाँ बाहर समुद्र में 14 दिन और रात रहा और सितारा या चांद या सूर्य कुछ नहीं, समझता हूँ कि मैं जाऊँगा और उन्हें बताऊँगा धैर्य रखो क्योंकि परमेश्वर जो भी है हमारी चिंता करेगा। ओ परमेश्वर इस प्रकार कार्य नहीं करता, परमेश्वर ये नहीं करता। भाई आपका विश्वास ठीक है, आपका विश्वास बहुत बढ़िया है, परंतु जब तक कोई बात आप पर प्रेरणा से ना आए, ओ यहाँ वो लाल ज्योति वहाँ पर लटक रही है, और यदि मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरा पैर गति देने वाले यंत्र पे है, मेरे पास कार है, मैं सामने वाली बत्ती को पार कर सकता हूँ और 120 मील की गति कर दूँ, ये सत्य है, मैं अपने पैर के नीचे सामर्थ का अनुभव कर सकता हूँ, परंतु अच्छा हो कि जब तक जाने का चिन्ह ना हो प्रतीक्षा करें। हालेलुया, आप समझे मेरा क्या अर्थ है? जब जाओ का चिन्ह आता है तो ठीक है, जब आपको बात की प्रेरणा मिले और परमेश्वर आपको प्रकट करे जैसा उसने वहाँ पहले किया, ठीक है, परंतु जब तक वो इसे नहीं करता तो हमारे पास यहूदावाद का झुंड है, नकल करता हुआ इस प्रकार से आगे बढ़ता है, कहता है मैं ठीक वैसे ही हूँ जैसे वे हैं, मैं भी मसीही हूँ। क्या आपको स्मरण है, तिकवा के पुत्र बाहर गए और बोले हम तुझे शपथ देते हैं उस यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है, बाहर निकल जा। उसने कहा पौलुस को मैं जानता हूँ और यीशु को मैं जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? वो घड़ी आ रही है जब सही और गलत प्रकट हो जाएगा। आज मसीहों में ये दिखता है, आज कलीसिया में यही दर्शाया जाता है, आज लोगों में यही दिखता है। मैं आपको देर से रुके हुए हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। पौलुस ने कभी नहीं कहा मैं विश्वास करता हूँ मैं जाकर कहता हूँ ठीक, धैर्य और हिम्मत रखें। नहीं, उसने क्या किया? उसने स्वर्गदूत को सुना, वो जान गया कि वही स्वर्गदूत है जो मुझसे सदा से बोला है, उसने पहचाना, फिर कार्य किया, गया और कहा धैर्य रखो, क्योंकि प्रभु का दूत जिसका मैं दास हूँ पिछली रात्रि मेरे पास आया और मुझे दर्शन दिया कि इस जहाज पर से कुछ भी नहीं खोएगा, धैर्य रखो, अब जाकर अपना भोजन खाओ, सब कुछ ठीक है। आमीन। जब ये आपको प्रेरणा दे दे, जब परमेश्वर इसे ठीक कर दे। मेरे पास यही कहीं एक टिप्पणी है, मैंने लिखी थी, ये यही है। ओ हम हर बात के अंत में हैं। मैं अब इसे इस प्रकार से लेकर आऊं, बंद करते हुए मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप पर कुछ प्रकट किया है। देखिए हर चीज अंत पर है। किसी ने सुरात्री पूछा मैं विश्वास करता हूँ, वो भाई फ्रेड सॉथमैन थे, हम पूछ रहे थे कि हम अंत के कितने समीप हैं। भाई देमा सेकेरियन ने वो दर्शन देखा, वैसे ही प्रकट हुआ और 5 दिनों के पश्चात घटित हुआ, ठीक उसी प्रकार से ये ऐसा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जोसेफ कैसा है, मैंने कहा ठीक है, कहा क्या वो दर्शन देखता है, मैंने कहा हाँ। उसने मुझे डेविड भाई वुड्स के पुत्र के विषय में बताया जहां वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा था इसके घटने के ठीक 3-4 दिन पहले, ठीक उसी प्रकार से। उसने कहा ये बातें परिवारों का पीछा करती हैं। मैंने कहा धार्मिकता या बुराई कोई भी एक, ये परिवारों का पीछा करती हैं। और हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे और वे फ्रेड ने मुझसे कहा भाई ब्रैनम ये कहां से आते हैं। मैंने कहा फ्रेड देखो हम इसे प्रकृति से ले लें, परमेश्वर अपनी प्रकृति में कार्य करता है। देखिए ध्यान दें क्या घटित हुआ, सूर्य पूर्व में उदित होता है। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता चीन की है, हम ये जानते हैं, हमारे पास सबसे पुरानी सभ्यता चीन की है, ठीक है, और सभ्यता पश्चिम की ओर चली गई है। यदि आप पश्चिम किनारा छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे पार चीन जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, हम अंत में हैं। बाइबल ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा एक ऐसा दिन होगा ना तो रात होगी ना दिन, जब सूर्य जा रहा है परंतु सांझ के समय इससे पहले यहाँ अंत हो फिर से उजियाला होगा। वैसा ही यीशु ने कहा वहाँ पहली और अंतिम वर्षा होगी और अंतिम वर्षा पहली और अंतिम वर्षा को लाएगी। उसी ऋतु में हम अंत समय में हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दर्शाऊं, राजनीति अपने अंत पर है, क्या आप ये विश्वास करते हैं? आज मुझे कुछ दिखाएं, ये राष्ट्र संसार में भ्रष्टाचार अभक्ति में सबसे खराब है। किसी ने उस रात्रि लुजियाना में कुरियर जर्नल पेपर पढ़ा जब ये सारी महिलाएं हर राष्ट्र से सुंदर स्त्री ली जाती है और उन्हें मिस यूनिवर्स के लिए खड़ा करते हैं, प्रत्येक ने किया परंतु रूस, और उन्होंने क्रुश्चेव के पास भेजा और उससे पूछा क्यों नहीं, उसने कहा रूस अपनी महिलाओं के कपड़े उतार कर पुरुषों के सामने नहीं चलाता। एक मूर्ति पूजक अभक्ति राष्ट्र हमारे लिए लज्जा की बात है, हम जो स्वयं को मसीही कहते हैं, कहा रूस अपनी महिलाओं के कपड़े उतार कर इस प्रकार चहलकदमी नहीं कराता, और आप रूस में छोटे कपड़े या इस प्रकार का कभी भी रूस में नहीं देखेंगे, ये अभक्त लोग, और हम जो अपने को मसीही कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा हर मेज उल्टियों से भर गई है और कौन मत शिक्षा देगा और जिसका दूध छुड़ाया गया है, परंतु आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, क्योंकि हकलाते होठों और अन्य भाषाओं में मैं इन लोगों से बोलूंगा और ये विश्राम है क्योंकि ये सारे वे सब ना सुनेंगे। हमारा अपना बुद्धि का विचार है, ओ कितना अच्छा होता कि हम पूरे दिन इसी पर टिके रहते। राजनीति भ्रष्ट हो गई, डेमोक्रेट रिपब्लिकन और सब नीचे चले गए। ये क्या है? ये कलम लगाए हुओं का झुंड है। हर व्यक्ति इसमें कार्य करता है। जो नया जन्म प्राप्त नहीं है वो शैतान का है। शैतान ने कहा संसार का हर राज्य मेरा है और यीशु ने उससे विवाद नहीं किया। संसार शैतान के द्वारा नियंत्रित है और हर मनुष्य जो सरकार के लिए कार्य करता है यदि वो मसीही नहीं है वो शैतान का है और शैतान के लिए कार्य कर रहा है। ये सारे राष्ट्र यीशु मसीह के सामने गिरेंगे। जब वो आता है तो वहाँ सहस्र शताब्दी होगा। आज यहाँ देखिए वे आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि कुछ पैसा मैंने मसीहों के ऊपर खर्च कर दिया और मुझे 20 वर्ष के लिए राज्य कारागार में भेजना चाहते हैं। मसीह कार्रवाई को बढ़ाने के लिए खर्च किया और एक वर्ष में लाखों डॉलर विस्की, बियर और सिगरेट के लिए लिखा जाता है कि राष्ट्र को भ्रष्ट किया जाए। और मैं जो धार्मिकता को प्रचार करने का यत्न कर रहा हूँ, यीशु मसीह के द्वार में खड़ा हूँ और मुझे इसके लिए बंदीगृह में भेजना चाहते हैं और इस प्रकार की बुरी चीजों को लेते हैं, नीची तेज बुद्धि, और इसके लिए टेलीविजन कार्यक्रम पर प्रचार के लिए लिखते हैं जिसने संसार को भ्रष्ट कर दिया है, स्त्रियों को कुत्तों के पास भेज दिया है। ऐसा महान श्राप जो राष्ट्र को कभी लगा और वे इसके साथ हैं। वे मुझे इसके लिए बंदीगृह भेजना चाहते हैं कि सुसमाचार प्रचार किया और कुछ डॉलर सुसमाचार प्रचार करने के लिए लिए जो लोगों ने मुझे प्रचार करने के लिए दिए। मैं धनी नहीं हूँ, मैं वो नहीं लिख सकता, परंतु वे फिर भी मुझे बंदीगृह में डालना चाहते हैं कि 2 वर्षों तक मुझे बंद रखें। एक पेशी जल्दी आ रही है। ओ कितनी नीचता, कितने गंदे। प्रभु अनुग्रहकारी हो, मैं ये बात कहूँगा, हो सकता है इससे पहले कि वो एटम बम भेजे परमेश्वर का यही मार्ग हो। आपको कुछ तो गलत करना ही है। आप जानते हैं आपको उसके समय के अभिषेक को छूना होगा उसी पवित्र लेख के लिए ताकि वो मेरे चुने हुए को मत छू। ये ठीक बात है। इसलिए यदि यही जलने वाले न्याय तक ले जाएं, इस प्रकार से डेनियल के दिनों में किया या कहीं और, इसे आने दो। प्रभु मैं आपका दास हूँ, ये ठीक बात है। ओ हाँ, राजनीति नीचे गिर गई, राष्ट्र भ्रष्ट हो गए। ठीक है, देखिए क्या अब वे सिपाहियों को छोटे कपड़े पहनाने जा रहे हैं। ओ प्रभु, राजनीति, युद्ध, राजनीति अपने अंत में है। तानाशाह गलत है, राजनीति गलत है। वे क्यों नहीं किसी धार्मिक राजा के साथ टिक गए जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें दाऊद दिया था। इंग्लैंड के महान लॉर्ड ने कहा जब ये लोकतंत्र बना था, कहा ये अब तो ठीक है, परंतु एक समय आएगा, उसने कहा ये कुछ नहीं होगा, ये बिना लंगर की नाव यात्रा होगी। और वो ठीक है, कहा राजनीति के हर कोने में अस्थिर खड़े हैं, सब प्रकार की गड़बड़ी जिसने सरकार को भ्रष्ट कर दिया है। और वो मनुष्य ठीक था, बिल्कुल वही घटित हो रहा है। एक मनुष्य यहाँ से उठकर जा सकता है और यहाँ से जाकर शराब पी लेता है और जो भी चाहता है और नष्ट कर देता है और वहाँ जाता है और वो सबको जानता है, इसलिए कुछ नहीं कहा जाता। एक जरा निर्धन व्यक्ति या कोई और जो नहीं जानता ये करने का यत्न करता है और वे इसे जेल भेज देते हैं। भ्रष्टाचार नीचे गिर गए हैं, गंदगी, उनमें से 40% समलैंगिक हैं। इस पर सोचिए, फिर से सदोम और अमोरा, वहाँ एक झुंड है जो धर्मी समझा जाता है। मुझे आश्चर्य है आगे क्या होगा जब अगला राष्ट्रपति आता है। परमेश्वर ने हमें एक धर्मी व्यक्ति दिया था, ये बूढ़ा ड्विट आइजनहावर, और अब ध्यान दें अगली चीज क्या आती है, और हमें अगली बार चूहा मिले, काफी संभावना है। परंतु एक फिरौन आ रहा है जो यूसुफ को नहीं जानता, इसे स्मरण रखें। मैं इसे एक सेकंड में लूंगा। राजनीति भ्रष्ट है, हम ये जानते हैं। युद्ध अपने अंत में है। ओ एक समय था कि वे एक दूसरे के सिर में पत्थर मारते थे, एक दूसरे को पत्थर की कुल्हाड़ी से सर पर वार करते थे, फिर वे धनुष और बाण से मारने लगे, तब फिर उन्हें बंदूक मिल गई, फिर मशीन गने, फिर जर्मन में 88 और हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, फिर उन्होंने हथगोले और जहरीले गैस फेंके, परंतु अब उनके पास हाइड्रोजन बम है। युद्ध अंत में है, हर राष्ट्र के पास है। इसलिए अब आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ तक कि आज एक छोटा सा राष्ट्र घोड़ा दबाना है, बस उसे यही करना है और वे सब चले जाते हैं। युद्ध अंत में है. ओ आमीन.
Wars at the end.
युद्ध अंत में है. राजनीति अपने अंत पर है. शिक्षा अपने अंत पर है. किशोर अपराध अपने अंत पर है. बालक बालकों के लिए कोई आशा नहीं. उनका चित्त ठिकाने नहीं है. आप और शिक्षा नहीं पा सकते. आप विद्यालयों में जाकर कोई बालक शिक्षा के साथ नहीं पा सकते. जब वो वहाँ से निकल कर आता है तो दूना नरकी हो जाता है. कोई शिक्षक कुछ कहे तो वो मार दिया जाएगा. वे एक छोटा सा झुंड बनाएंगे और वहाँ जाकर शिक्षक को गोली मार देंगे. उसे बाहर निकाल कर उसे बांध दो. हमने 2000 शिक्षक खो दिए. ओ एक मिनट रुकिए. मैं विश्वास करता हूँ वे 20,000 शिक्षक थे इस बीते वर्ष. मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ. ना ही मैं ये कहना चाहूँगा. वे बार बार इस बात के लिए हस्ताक्षर लेते हैं कि इन बालकों को उच्च विद्यालय की शिक्षा दो. उन्हें इसकी आवश्यकता है. परंतु शैतान ने उन्हें पकड़ लिया. शैतान ने उन्हें पकड़ लिया है. बाहर जाना ये कोई साधारण बात नहीं है. और उसका कोई अर्थ हो और दरवाजे उखाड़ कर और हेलोवीन नाइट में पेड़ पर टांग दिए और बालकों के समान कोई छोटेपन का कार्य किया जैसे बालक करते थे या किसान का घोड़ा गाड़ी लेकर सड़क पर छोड़ दी. इस प्रकार से नहीं. परंतु वे बुद्धि रहित हैं. वे पागलपन के कार्य करते हैं. आपको गोली मार देना, आपको मार डालना, आपको घात करना, जहर दे देना, कुछ भी. ये अगली पीढ़ी है. गर्भ धारण करने का अंत हो रहा है. स्त्रीत्व, मातृत्व, क्यों? हर जगह गर्भ निरोध का अभ्यास हर स्थान पर किया जा रहा है और छोटे कुत्ते ने उसका स्थान ले लिया है. नैतिकता, इसमें अब कोई नैतिकता नहीं बची है. स्त्रियां दुष्ट पोशाकें पहनना, सब प्रकार के हॉलीवुड के दुष्ट लोगों की नकल टेलीविजन के द्वारा आती है. सब प्रकार की बातें, फैशन, सब कुछ अंत में है. शिक्षा अंत पर है. राजनीति अंतिम स्थिति में है. युद्ध अपने अंत पर है. सभ्यता अपने अंत पर है. ये सब चीजें अपने अंत पर हैं. ओह, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगला क्या है? हम सब बातों के अंत में हैं. अब कलीसिया का जीवन अंत में है. साधारण कलीसिया, कलीसिया, अब ये इस पर थोड़ी बहुत मार करेगा. परंतु शारीरिक कलीसिया, एसाव की कलीसिया, वो अपने अंत पर आ गई है. वो क्या कर रही है? कलीसियाओं के संघ की ओर बढ़ रही है, जो कि अंततः रोमनवाद में मिल जाएगी कि कैथोलिकवाद से लड़े, यानी कैथोलिकवाद रोमनवाद से लड़े. पोप जॉन सारी कलीसियाओं से आह्वान कर रहा है कि वापस आएं, और वे आएंगी और वे सब एक साथ मिल जाएंगी. ठीक जो यहोवा यूं कहता है ने कहा है. आप कहते हैं भाई ब्रैनम जरा एक मिनट रुकिए, आप अपनी लीक पर से हट रहे हैं. यदि मैं हट रहा हूं तो परमेश्वर ने इसे लीक से हटकर लिखा है. इस मामले में आपको मिकाया होना पड़ेगा. उस रात्रि मेरे पास मॉरिस सिरोलो ने कहा, भाई ब्रैनम मसीह विरोधी कहाँ है? यहूदी मसीह विरोधी है? मैंने कहा, मॉरिस और तुम यहूदी हो? उसने कहा, वे परमेश्वर से अधिक घृणा करने वाले लोग हैं. मैंने कहा, मॉरिस ये मत कहो, मुझे बताओ पवित्र शास्त्र में मसीह विरोधी कहाँ? यरूशलेम से आया है. मसीह विरोधी रोम से आता है, ना कि फिलिस्तीन से. उसने कहा, अच्छा देखिए, मैं वे परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग हैं. हाँ, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि उसने इनकी आंखें अंधी की हैं ताकि हमें देखने का दिन मिले? परंतु हमारे दिन भी जल्द समाप्त हो जाएंगे. उसने कहा, ओ भाई ब्रैनम, मैंने ये कभी नहीं सोचा. देखिए, आप इसी स्थिति में हैं. देखिए, हम अंत में हैं. शारीरिक संसार, शारीरिक कलीसिया अपने अंत पर है. देखिए, ये कैसी अपनी कलीसियाओं के संघ की ओर बढ़ रही है. यूनाइटेड ब्रदरन उसमें चले गए, पेंटिकॉस्ट उसमें चले गए और बाकियों ने अपने आप को संगठित कर लिया है. आप इन केनियों को देखिए, एसाव की आत्मा से होते हुए बहुत ही धार्मिक और संसार के साथ अपना संघ बना लिया. आत्मिक समझ नहीं, जयवंत होने की योग्यता नहीं, न ही परमेश्वर के चुने हुए की बुलाए जाकर और अलग किए गए हों. ओ यदि मैं इसे समझा सकता होता, जब यदि मैं इसे किसी प्रकार से आपके हृदय में बैठा सकता. वे इसे नहीं देखते, उनके आंखें हैं, वे नहीं देख सकते, कान हैं और सुन नहीं सकते. ओ हम आत्मा में इतने सुस्त क्यों हैं? अब इसे सुनिए, हर चीज अपने अंतिम चरण में है और आत्मिक कलीसिया अपने अंत पर है. ओ परमेश्वर, ये अपने अंत पर आ रही है. पीछे की ओर देखिए, जब ये लूथर के साथ आरंभ हुई थी, आत्मिक को हिलाकर रख दिया था. तब वैसली के साथ पवित्रीकरण में आए, तब पेंटिकॉस्टल के साथ पवित्र आत्मा, और अब अंत समय में मसीह का आत्मा कलीसिया में इस प्रकार से है. ये उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो कि उसने पहले किए थे, फिर से अपने सिर की ओर मसीह और कलीसिया को जोड़ने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन और मृतकों का पुनरुत्थान। हम अंत के समय पर हैं। यीशु ने ऐसा कहा है, जैसा कि सादों के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। क्या आप इसे समझ सकते हैं? शारीरिक कलीसिया को देखिए, देखिए वे अलग और अलग होकर कहाँ जा रहे हैं। आत्मा से भरी कलीसिया को देखिए, वो अपनी छोटी छोटी अर्थहीन बातों को छोड़ रही है और आत्मा में ऊपर बढ़ रही है। ये सही है कि अल्पसंख्यक में है, आत्मा में आ रही है, परंतु ऐसे स्थान पर आ रही है जब तक कि वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ पवित्र आत्मा इनमें से होकर कार्य ना करे, अपने तरह से कार्य कर रहा है, उसे अपना स्वामी मानकर स्वीकार कर रही है, अपने स्वामी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और बाकी सब संगठित हो गए। जिस संसार को काट दिया था वही वापस जा रही है, कैथोलिक वाद की अध्यक्षता में उस महान संघ में जा रही है, और उस पशु की एक मूरत बनाई गई थी, एक मूरत। उसकी समानता में कुछ कुछ कलीसिया का संघ कैथोलिक वाद के साथ बना लिया। वे दोनों एक साथ होकर कार्य कर रहे हैं। उस पशु के साथ कौन लड़ सकता है या उसकी मूरत के साथ? निश्चय ही नहीं। हम घंटों इसमें कैसे चल सकते हैं? अब मैं आपसे ये कह दूं और तब ये समाप्त करने का समय होगा। ये मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि ये लंबा चलेगा। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि परिसमाप्त करूँ, जबकि परमेश्वर ने ये बातें भी कही हैं। कहा जाकर बता दे, बोल, अपनी शांति को अधिक बनाए मत रख, उन्हें ये दिखा दे। यदि वे इसे स्वीकार न करें तो तू उनके लहू से बच गया। घड़ी यही है, समय ये आगे बढ़ रहा है। संसार अपने अंत पर है, ये और स्थिर नहीं रह सकता। युद्ध अपने अंत पर है, आप और अधिक युद्ध नहीं लड़ सकते। यदि आप युद्ध लड़ते हैं तो ये नहीं होगा, केवल पहले वाला घोड़ा दबाता है, बस इतना ही। राजनीतियाँ ये सड़ी और भ्रष्ट हो गई हैं। कलीसिया का संसार, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकोस्टल, ये सुअरनी अपनी कीचड़ में, कुत्ता अपनी उल्टी की ओर। ये ठीक बात है, उनमें से प्रत्येक परमेश्वर ने उस भ्रष्टता में से बाहर बुलाया, एक चुनी हुई कलीसिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। एसाओ, उन्होंने कहा हम लोग कलीसिया हैं, मैं संदेह नहीं करता। याकूब एसाओ पिता भी था, ये ठीक बात है, इसलिए। परंतु मेरा अर्थ इजाक था, एसाओ का पिता, और याकूब उसका भाई था उसके साथ। परंतु एक ने जन्म अधिकार की क्षतिपूर्ति की, दूसरे ने इससे घृणा की। एक ने सुना, पहचाना और कार्य किया, दूसरे वाले ने कहा ओ जब तक मैं आराधना ले जाता हूँ और जो ठीक है वही करता हूँ, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आप भी इसी स्थिति में हैं। अब तो समाप्त करते हुए मैं ये कहता हूँ, एक और टिप्पणी, वास्तविक कलीसिया को इतना अब जीवित रहना है। ओ ये इतना आनंद विभोर का समय है, वास्तविक सच्ची कलीसिया के लिए, उस चुनी हुई कलीसिया के लिए, जब आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जब आप स्वयं को देखते हैं और देखते हैं, अपने जीवन को ध्यान से देखें और देखें कि संसार की सारी वस्तुएं नष्ट हो चुकी हैं और आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। अब सुनिए, बंद करते समय ध्यान से सुने, आप जानते हैं कि आप पीछे छोड़ चुके हैं, आपका जीवन ये सिद्ध करता है, उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे। आपका समस्त उद्देश्य मसीह है, आप किसी भी मिनट में उसके आगमन की बात जो रहे हैं, आप आत्मा में चलते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसे अपने द्वारा कार्य करते देख रहे हैं। वो नहीं जो आप करना चाहते हैं, परंतु केवल वो इसे स्वयं करता है। ओ क्या ही समय है। मुझे एक कलाकार स्मरण आता है जो रोम कला सीखने गया कि कलाकार बने, एक नवयुवक, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। वो बाकी अमेरिकन लड़के और लड़कियों से भिन्न था और कलाकार बनने के लिए समय बिताता रहा, और उस संसार में होते हुए ये एक नवयुवक उनमें अलग था। वो भला व्यक्ति था और उन्होंने ध्यान दिया, उनकी बड़ी बड़ी दावतें होती थी और वहाँ पहुँचकर और कैसे कैसे वे रोम में करते हैं, जितनी शराब वे पी सकते थे पीते थे। मैं स्वयं वहाँ था और मैंने इसे देखा, सड़क पर चले जाएं पुरुष और स्त्रियाँ, और चल रहा है, यहाँ तक कि पार्कों में लैंगिक मामले होते हैं, बिल्कुल खुले स्थानों में कोई ध्यान नहीं देते। इंग्लैंड में भी वे बाकी सब भी समझे, यहाँ से अधिक बुरा हाल नहीं है, यही यहाँ पर भी है, बहुत ही बुरा। पुलिस और बातों के कारण थोड़ा सा पर्दा है, परंतु बहुत ही खराब है। ठीक है, तो ये नवयुवक, वो स्वयं को इस सब से अलग रखता था। जब वे अपनी पार्टियों में जाते थे तो वो उन्हें जाने देता था, परंतु वो स्वयं कलाकारी सीखता था। इसलिए एक दिन एक बूढ़ा प्रभारी जो कि एक मसीह था, जो संग्रहालय के आसपास था, कला संग्रहालय, उसने कहा आओ पुत्र, थोड़ी सी सैर करें, आओ थोड़ा सा टहल लें, थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। इस प्रकार वे पहाड़ी पर चले गए और उन दोनों के हाथ पीछे की ओर विश्राम अवस्था में थे। पहाड़ी पर चले गए, सूर्यास्त हो रहा था। इस प्रकार बूढ़े मनुष्य ने युवा चित्रकार से कहा, उसने कहा, पुत्र तुम एक अमेरिकन हो? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। उसने कहा, तुम यहाँ चित्रकला में अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए हो। मैं समझता हूँ कि तुम अपने जीवन कार्य को कलाकार बनाने के उद्देश्य से कर रहे हो। उसने कहा, मैं उसी पर कार्य की योजना कर रहा हूँ। श्रीमान कहा, मुझे प्रतीत होता है कि तुम मसीही हो। उसने कहा, मैं एक मसीही हूँ। उसने कहा, अच्छा तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने ये दूसरों से पूछा, वे कहते हैं वे भी मसीही हैं। उसने कहा, तुम्हारे में इतनी भिन्नता क्यों है? अमेरिका से आए बाकी लोग से क्या है जो तुम्हें भिन्न बनाए हुए हैं? और ये लड़कियाँ अमेरिका से क्या है जो तुम्हें इतना भिन्न बनाए हुए हैं? और फिर तुम कहते हो, तुम सब कहते हो कि तुम लोग मसीही हो। उसने कहा, श्रीमान आप देखते हैं जिस प्रकार ये सूर्य डूब रहा है। उसने कहा, मैं देखता हूँ। उसने कहा, वहाँ सागर के पार न्यू इंग्लैंड के निश्चित प्रदेश में, उस प्रदेश के निश्चित नगर में, वहाँ निश्चित घर में एक लड़की है जिसे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे प्रति सच्चा रहूंगा। उसने कहा, मेरे मस्तिष्क में यही है कि कला की शिक्षा पाकर और उस लड़की के पास वापस जाऊंगा जो कि मेरे प्रति सच्चा जीवन व्यतीत कर रही है। उसने कहा, जो मैं करता हूँ उसी प्रकार जीता हूँ। ओ भाई बहन, आप घूम सकते हैं, हम क्यों नहीं इसकी चिंता करते जो वे हमें कहते हैं? मैं चिंता नहीं करता कि वे क्या कहते हैं। उस दिन मैं सैन जुआन प्रूतो रिको में फ्रेड के साथ खड़ा हुआ था और समुद्र के पार देख रहा था और मैंने ध्यान दिया कि समुद्र के भीतर आधा मील की ओर चट्टानों की कतार बड़ी बड़ी लहरों को तोड़ रही थी। उसने कहा, फ्लेमिंगो पार्क में चल रहे हैं और आदि आदि। मैंने कहा, उसने कहा, भाई ब्रैनम ये स्वर के समान है। मैंने कहा, भाई परंतु वहाँ समुद्र शांत होगा। मैंने कहा, बस उस पार समुद्र के सामने वहाँ एक निश्चित स्थान है जो स्वर्ग कहलाता है। वहाँ एक जो यीशु कहलाता है इस स्वर्ग में। एक दिन उसने मेरे सारे पाप ले लिए थे और मैंने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे लिए सच्चाई से जीऊंगा। मैं वही चीजें करूंगा जो वो मुझसे करवाना चाहता है। यही कारण है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यही है जो मसीह को भिन्न प्रकार से जीवित रखता है। वो भिन्न है क्योंकि उसके पास जीवित रहने के लिए कुछ भिन्न है। आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। इस प्रातः मेरे निराश मित्रों, क्या आपके पास भिन्न जीवन जीने के लिए कुछ है जो आपको संसार से बाहर ले आए? कुछ ऐसा है जो आपके लिए संसार से अधिक महत्वपूर्ण हो, मसीह के लिए जीना? यदि ये आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं अभी इसे ले लो। केवल इसलिए आराधनालय मत जाओ और कहो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति होना चाहता हूँ। ये मत करो। आप मसीही बनना चाहते हो। आप यदि आपके हृदय में सदा से कुछ रहा है, आपको बताता है कि तुम ठीक नहीं हो, परंतु मैं ठीक होना चाहता हूँ। आपके अंदर सदा से कोई इच्छा रही है कि आप अब भी नहीं हैं। क्या आप नहीं जानते कि यह परमेश्वर आपको बुला रहा है? अपनी पीठ ना फेरें, क्योंकि यदि आपको एक बार ज्योति मिली और सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंतिम बार इसे अस्वीकार कर दिया, तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी न बचा। ऐसा के साथ ना हो लें। जो भी हो, याकूब के साथ आए, चाहे आपको जो कीमत चुकानी पड़े। यह आपको अपने घर से चुकाना, यदि ये आपकी नौकरी से चुकाना पड़े, यदि ये आपके पति से चुकाना पड़े, ये आपकी पत्नी से, यदि ये आपके बच्चे से चुकाना पड़े, यदि इसका भुगतान किसी से भी हो, जन्म का अधिकार ले लो। यही है जो महत्व रखता है। इस प्रातः यदि आपको ऐसी अनुभूति होती है और ये जन्म सिद्ध अधिकार लेना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं दे सकता, परमेश्वर दे सकता है और वही है जो तुमसे बातें कर रहा है। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? भाई बनम मेरे लिए प्रार्थना करें। वो जन्म सिद्ध अधिकार मैं चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे हर जगह। उस जन्म सिद्ध अधिकार को मैं चाहता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही महान और पवित्र परमेश्वर, तेरी सारी भलाई और अनुग्रह के लिए जो तूने मनुष्यों के पुत्र और पुत्रियों पर की है। और हम अनुभव करते हैं कि हम अंत समय पर हैं। कुछ भी अधिक समय नहीं चलता। हम केवल अनुग्रह के समय में जीवित हैं, जैसा कि ये नूह के दिनों में था। परमेश्वर का धैर्य, जब नाव बनाई जा रही थी केवल 8 प्राणी बचे थे। आपने कहा ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। परमेश्वर का धैर्य नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परंतु सबके सब प्रायश्चित कर सकें। और आज इस भवन में यहाँ पुरुषों और स्त्रियों ने अपने हाथ उठा रखे हैं, लड़के और लड़कियों, युवक और बूढ़ों ने अपने हाथ उठा रखे हैं और कह रहे हैं, कि कुछ है जो मुझे खींच रहा है। ओ परमेश्वर, होने पाए कि वे इसे कभी भी अस्वीकार न करें। हो सकता है वे अपनी शिक्षा को बेच दें, जो कुछ भी उनके पास है उसे बेच डालें। उस मनुष्य के समान जिसने वो बहुमूल्य मोती पाया, वो विशेष महान मोती था, वो अति महान मोती था, और उसने सब कुछ अपना बेच दिया ताकि वो इस विशेष महान मोती को खरीद सके। हो सकता है आज प्रातः वे संसार का जो भी हो उस सब को बेच दें, संसार की अपनी सारी ख्याति। प्रभु, ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनमें से बहुत सो ने बहुत बार ये सुसमाचार सुना है और फिर भी संसार में चले जा रहे हैं और संसारिक फैशन के वस्त्र पहन रहे हैं और संसार के समान वस्त्र धारण करते हैं और दावतों और संसार की बातों में जा रहे हैं, संसारिक चीजों में भाग ले रहे हैं और संसार के समान व्यवहार कर रहे हैं और संसार की वस्तुओं को प्रयोग में ला रहे हैं। ओ परमेश्वर, होने दे इस प्रातः वे लज्जा का अनुभव करें। प्रभु, यदि उनमें कोई कहीं आशा हो तो वापस घुमा दें, यही घड़ी हो। प्रभु, ये पुरुष यहाँ पर हैं, ओ परमेश्वर इन पर अनुग्रह कर। इनमें से बहुत से अब भी संसारिक बातों में जी रहे हैं, अब भी संसारिक पहनावे और संसारिक आनंद ले रहे हैं, पाप, धूम्रपान, पीना, सामाजिक पे, थोड़ी सी बियर पास में, इस प्रकार का सा कुछ, या लालसा और छोटी नंगी तस्वीरें, गंदे पहनावे में युवा महिलाएं, और वे सड़कों पर उन शरीरों को देख रहे हैं और वे उन्हें ताकते हुए लगभग एक दूसरे को रौंद रहे हैं और स्वयं को मसीह कह रहे हैं, और ये जानते हुए कि महिलाओं के ये शरीर संभवतः अगले 24 घंटों में नीचे कब्र में सड़ रहे होंगे और कीड़े उनके रूप के ऊपर रेंग रहे होंगे और उनके शरीर की नलिकाओं के आकार और उनके प्राण शैतान के नरक में, क्योंकि जिस प्रकार उसने जीवन व्यतीत किया और फिर भी वो अपने होंठों पर रंग लगाती और आप पर हिनहिनाकर हंसती है। परमेश्वर इन लोगों पर अनुग्रहकारी हो। ओ प्रभु, इन्हें नष्ट ना होने दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह भेज। प्रभु, ये उनमें से प्रत्येक को दे, केवल आप ही हैं जो इन्हें आशीष दे सकता है, और यदि तूने इन्हें अनंत जीवन के लिए बुलाया है तो होने दे इनके हृदय खोले जाएं। और इस प्रातः वे हर चीज को एक ओर रख दें और फिर वे इसे ग्रहण करेंगे, पिता इसे प्रदान करें। और अब होने दे कि पवित्र आत्मा बीमारों और दुखियों के लिए इस सभा में आए और इस प्रातः जो संदेश प्रचारा गया है उसे लोग देखें कि हर चीज अपने अंत पर है और यहाँ तक कि यीशु अपनी कलीसिया में कार्य कर रहा है। प्रभु, इसे अभी घटित होने दें ताकि आप इन लोगों को अपने हाथों में ले सकें, और जब वे पवित्र आत्मा को लोगों में कार्य करते देखें तो ये उस संदेश को जिसे मैंने प्रचारा है उसकी पुष्टि करे कि हम अंत समय में हैं और ये सुन सकें। इन्होंने सुना है और होने दें कि ये इसे पहचाने कि वही यीशु जिसने अपने दिन में जिस प्रकार किया, यहाँ वो उसे अपनी कलीसिया के द्वारा इस अंत के दिन में कर रहा है, और तब वे इसे अपने जीवन, शरीर और प्राण और आत्माओं को उसे देते हुए उस पर कार्य करें। प्रभु, मैं इन्हें आपको देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में। अब इस भवन में जहाँ लोग हैं, इस प्रातः मैं बिली को भेजता हूँ ताकि प्रार्थना पत्रों को दे। वो क्या आप बीमार और आवश्यकता में हैं? यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे जैसे उसने उस स्त्री पर जो कुएं पर थी प्रकट किया और मुझे बताए कि आपकी परेशानी क्या है या आपके विषय में जो आप जानते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो क्या यह परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार करेगा? क्या यह आप बाकियों को विश्वास दिलाएगा? क्या यह हमारी पहली भेंट है? ओ, आपने मुझे पहले देखा है परंतु मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, क्या ये ठीक है? ठीक है, प्रभु परमेश्वर आपके निवेदन को प्रदान करे। अब ये वास्तविक है या नहीं? ओ प्रभु, अपने बुद्धि वाले धर्म को पुकारें। बाल कहा, अब वो कहाँ है? एलिया ने कार्मेल पर्वत पर कहा, बाल कहाँ है? कहाँ? उसे जगाओ। आपको यीशु को जगाना नहीं है, वो हर समय जागा रहता है, वो सदा उपस्थित, सदा जीवित, सदा योग्य, कल आज और सर्वदा एक सा है। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर ही रहता है। क्या आप विश्वास करती हैं कि आपका हृदय रोग आपको छोड़ने जा रहा है और आप चंगी होने जा रही हैं? आप यहाँ से नहीं हैं। आप लेक्सटन जाकर लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपके लिए कितने महान कार्य किए हैं। ये लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है जो इसे कभी नहीं ले पाते। जीवित कलीसिया इसे तुरंत पकड़ लेती है और जानती है कि ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। पीछे उन्होंने अपना हाथ उठाया। महिला, क्या ये आप थी? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी बता सकता है? वो भाई वहाँ आखिर में, मैं विश्वास करता हूँ, उसने कुछ क्षण पहले कहा कि भाई आप विश्वास करते हैं, आप करते हैं तो फिर चर्म रोग आपको छोड़ देगा, आप ठीक हो जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? आप इसे चंगाई के समान स्वीकार करते हैं? यदि आप करते हैं तो अपना हाथ उठाएं। देखा, ओ ठीक है, वो मेरे लिए अपरिचित है पैट, ये तुम जानते हो। एक महिला मेरी ओर देखते हुए प्रार्थना कर रही है, कहा कि वो अपरिचित थी। आप विश्वास करती हैं कि उच्च रक्तचाप आपको छोड़ने जा रहा है? ये ठीक बात है कि नहीं? यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। ठीक है, परमेश्वर में विश्वास करें। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? आप लोग जो मुझे जानते हैं, आप लोगों के विषय में क्या है? आपके हृदय पर कुछ है? अपना हाथ उठाएं। आप में से बहुत सारे, मैं नहीं समझ सकता, इसे तो आना ही है। आप जानते हैं ये आपका विश्वास है। जॉर्ज ब्रूस, मैं उसे वहाँ बैठे हुए देखता हूँ। जॉर्जी, तुम सदा किसी के लिए कुछ ढूंढती हो। आप कैंसर से चंगी हुई थी, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं है। जिस दिन तुम इस आराधनालय में आई और सामने वाले दरवाजे से निकल गई और पवित्र आत्मा मुझ पर आया और आपको वही कोई कारनामा बताया जिसे संसार में कोई नहीं जानता, केवल आप और परमेश्वर और दूसरा व्यक्ति, क्या ये ठीक बात है? ये ठीक बात है। आप मेरा विश्वास करती हैं क्या? जॉर्जी, आप करती हैं? जॉर्जी, तुम्हारे हृदय में कुछ है? आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है कि तुम्हारे हृदय में क्या है? वे लोग जो मुझे जानते हैं, ये उन बाकी लोगों के लिए पर्याप्त होगा कि विश्वास करें। मैं जानता हूं जॉर्जी, परंतु वो कुछ और सोच रही है। उसके पास दो जन हैं जो यहाँ से दूर, वो उनके लिए प्रार्थना कर रही है। दोनों कॉरिडिन में रहते हैं, ये ठीक बात है। और यहाँ उसके पास एक व्यक्ति है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही है, वो अस्पताल में है। आप उसकी चंगाई के लिए अधिक प्रार्थना नहीं कर रही हैं, परंतु उसके प्राण के उद्धार के लिए। ये यहोवा यूं कहता है, ये ठीक बात है जॉर्जी, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी ने वहाँ पीछे अपना हाथ उठा रखे हैं, वहाँ पीछे, वहाँ पीछे। आपका क्या है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? आप मेरे लिए अपरिचित हैं। ये व्यक्ति बैठा हुआ मेरी ओर देख रहा है, मैं आपको नहीं जानता। क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं? परमेश्वर का दास, आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जो मैंने बताया सत्य है? आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करेंगे तो जाएं। आपके पास केवल यही है क्योंकि आप कैंसर से पीड़ित हैं। ये ठीक बात है। आप इस नगर से नहीं हैं, आप न्यू एल्बनी से हैं। ये ठीक बात है, आपको कैंसर है। यदि आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। क्या आप ये स्वीकार करेंगे? अपना हाथ उठाएं। प्रभु धन्य हो। मैं विश्वास करता हूँ वो महिला जो सफेद सी टोपी पहने अपने सिर पर, अश्वेत महिला, अपना हाथ उठा लिया है। अभी तक मेरे पास कोई अश्वेत व्यक्ति नहीं है। महिला, क्या आप विश्वास करती हैं? ठीक है श्रीमान, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आपको हृदय रोग, पेट का रोग, गड़बड़ियाँ, आज प्रातः कोई आपको यहाँ लाया है। यहोवा यूं कहता है, ये ठीक बात है कि नहीं महिला? यदि ये ठीक है तो महिला, जो रुमाल आपके हाथ में है उसे फहराएं ताकि लोग देख सकें। मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या आपने अपना हाथ उठाया? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ और आप मेरे लिए अपरिचित हैं। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है या परमेश्वर आपको जानता है? आप विश्वास करते हैं वो मुझे बता सकता है कि आपके हृदय में क्या है? आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ये आपके पिता हैं। हृदय रोग है, ये ठीक बात है। और आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में हैं। यहोवा यूं कहता है, यदि आप विश्वास कर सकें। आपका क्या है? वो साधारण महिला जिसने अपना हाथ इस प्रकार उठाया है, आप विश्वास करती हैं? आपकी परेशानी है कि आपके हाथ पर ददोड़े हैं, परंतु आप पोते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये ठीक बात है, बालक सामान्य नहीं है, ये सत्य है। महिला, क्या यही बात नहीं है इसके? क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? जब मैंने कहा बालक, एक मिनट रुकिए, ओ ये आप हैं, आपके पुत्र की कार दुर्घटना हो गई, अपाहिज। महिला, मैं आपको नहीं जानता, परंतु ये सत्य है। यदि ये सत्य है तो अपना हाथ उठाएं। अब यहाँ कौन है? ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आत्मिक बातों के प्रति सुन्न ना हो, ये परमेश्वर यहाँ पर है। जो पवित्र आत्मा आप चाहते हैं, क्या अब आप विश्वास करते हैं? क्या आप अब विश्वास करते हैं? ठीक है, तो फिर अब प्राप्त करें। इसे प्राप्त करने का ये समय है। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप जो रोगी और आवश्यकता में हैं, मैं चंगा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य चंगा नहीं कर सकता, मैं पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, परंतु एक जो चंगा और पवित्र आत्मा दे सकता है वो यहाँ पर है, वही है जो ये करता है। अब अपने सिर झुकाएं, आप इसी समय विश्वास करें जैसे कि मैं आपके लिए और रुमालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं हर अपरिचित से होकर निकला हूँ, जहाँ तक कि मैं अपने को निर्बल अनुभव करता हूँ और दे रहा हूँ, अगुवाई अनुभव कर रहा हूँ कि यही समय है। हो सकता है कि चुनावों ने देख लिया है, संभव है प्रत्येक उनमें से प्रत्येक प्रभु जो बुलाए हुए और जो आपके आत्मा के द्वारा अनुमति प्राप्त किए हुए, कुछ उनके विश्वास, उनमें से कुछ का बहुत सा विश्वास जब उन्होंने सोचा कि उनके पास था, उन्होंने अपने हृदयों में आरंभ किया। और जब एक बार वो वहाँ से निकल रहा था, स्त्री ने उसका वस्त्र छू लिया और उसने फिर कर कहा, किसने मुझे छुआ? और उन्होंने कहा, अरे सबने तुझे छुआ है। उसने कहा, परंतु मुझे प्रतीत होता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने उस बेचारी स्त्री को पाया, उसे बताया कि उसे लहू बहता था और उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। और बाइबल ने कहा वो अब भी आज महायाजक है, वो हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। पवित्र वचन ने कहा है वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, और वही महायाजक वैसे ही फिर कार्य करेगा और वही करेगा, और लोग देख सकें कि आत्मा से भरी कलीसिया सिर की ओर बढ़ रही है। मसीह का आना तय है कि अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। उसके अंतिम महान चिन्ह, जैसे कि ये सदोम के दिनों में था, कौन बोला? सारा को जान गया और जानता था कि उसके पास पत्नी है जिसका नाम सारा है। जानता था कि वो तंबू में हंसी। उसने कहा, यही चिन्ह होगा, जब तुम इसे देखो तो स्मरण रखना, वो पीढ़ी जाती ना रहेगी जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। ये यहाँ है, हम अंत में हैं। प्रभु प्रदान करें कि यहाँ हर बीमार व्यक्ति जान सके कि जीवित यीशु मसीह उपस्थित है। होने पाए कि ये रुमाल हर बीमार शरीर को आशीषित करे जिनके पास ये पहुँचे। मैं लोगों के लिए शैतान को दोषी ठहराता हूँ। मैं विश्वास में होते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसे निकालता हूँ। मैं हर संदेह की छाया को निकालता हूँ। होने पाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ अनंत जीवन के लिए ठहराया हुआ है, इस घड़ी में इसे ग्रहण कर ले। होने पाए कि हर अंधविश्वास, हर छोटी प्यास बुझे, संसार की हर छोटी चीज, हर छोटा बोझ, जैसे कि बाइबल ने कहा, आओ हम हर बोझ को एक ओर रख दें, और पाप जो हम पर सरलता से आक्रमण करता है, ताकि हम धैर्य से दौड़ को दौड़ें, जो कि हमारे सामने है, देख रहे हैं, किसे? कलीसिया को, संगठन को, लेखक को, और हमारे विश्वास के पूर्ण करने वाले को, जो अब यहाँ है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उसकी ओर ताक रहे हैं। कौन? हमें वो वचन जो जानते हैं उन्हें नहीं लेना है, जो कि हम जानते हैं कि ये सत्य है, परंतु फिर भी वे वचन आज प्रातः हमारे लिए वास्तविक बन गए। वही यीशु जो मरा नहीं, वो फिर से जी उठा है, और 2000 वर्षों पश्चात वो अपनी कलीसिया को सिर की ओर ला रहा है। यहूदा की आत्मा उनके मध्य में कार्य कर रही है, परंतु होने पाए कि हर ठोकर के कारण को वे एक ओर डाल दें और हर चीज इस घड़ी में, और उसे स्वीकार करें। वे सुने जो उन्हें उपदेश में से होते हुए मिला। होने पाए वे इसे पहचाने कि हर वचन जो उन्होंने सुना प्रकट होने पाए, और वे इसे पहचाने कि ये मसीह है, और वे इसका अनुकरण करें, इस पर चलें, इसे स्वीकार करें और अपने पैरों पर खड़े होकर गवाही दें। पवित्र आत्मा के भरने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। बीमार चंगे हो जाएं और पीड़ित चंगे हो जाएं, और प्रत्येक हृदय की इच्छा ठीक कर दी जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे प्रदान करें। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, आपके हृदय खुले हुए हैं, अपने लिए थोड़ा प्रार्थना का समय लें, थोड़ा सा पहले। मैं समझता हूं कि बपतिस्मे की सभा होने वाली है, इसे थोड़ा सा पहले। आज रात्रि दूसरी सभा होगी। अब स्मरण रखें, इस सुअवसर को हाथ से जाने ना दें। मैं यहाँ 2.5 घंटों से हूँ या अधिक अपना समय लेने का यत्न कर रहा हूँ और सुसमाचार दे रहा हूँ और इसे सिद्धता के साथ सामने रख रहा हूँ। तब हम अंत में आते हैं और वही मूल पाठ सुने, पहचाने, अनुकरण करें। इसे अपने सिर पर से ना निकलने दें। आपने ये सुन लिया है, क्या आप पहचानते हैं कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है? क्या आप जानते हैं कि जो आपको बुला रहा है वो है? तो फिर इसका अनुसरण करें। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रार्थना का समय लें। भाई नेविल, आप आए, यदि आप यहाँ आए थोड़ा सा प्रार्थना में, केवल उसे पकड़े रहें।